21वीं स्पार्क के एनुअल मीटिंग कम रिट्रीट के अंदर हम सभी भाई बहनें जितनी उमंग और उत्साह के साथ यहां पहुंचे हैं, काफी नए भाई बहनें भी इस साल जुड़े हुए हैं, तो हम स्पार्क विंग की ओर से उन नए भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि जितनी नवीनता हम अपने में लाते हैं उतनी नई नई आत्माओं के अंदर भी वो जागृति होती जाती है, इसका ये प्रमाण है। तो आज इस कार्यक्रम की और भी शोभा आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी पहले बहनों से कि जो हमारे वरिष्ठ आए हुए हैं उनका फूलों से स्वागत करें। सबसे पहले हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अंबिका बहन जी जो यहां पर उपस्थित है, पहले दीदी का हम सभी दिल से स्वागत करते हैं। अलका बहन जी जो कल्याण से आए हुए हैं उनका भी स्वागत है। अनुरूप मराठे जी पुणे से आप आए हैं। डॉक्टर बिपिन कॉन्ट्रैक्टर अहमदाबाद और राजकुमार भाई जी पुणे से, तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत। पार्क के हमारे मूर्ति लहान पंकीर्ति महान ऐसे आदरणीय भ्राता श्रीकांत भाई जी का भी स्वागत। अब थैंक यू। आप सभी का शब्दों से स्वागत करने के लिए आदरणीय अलका बहन जी से निवेदन करूंगी, जो पिछले 36 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और कल्याण सेवा केंद्र के साथ साथ और भी 3 तालुकाओं को संभालते हैं। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी को खास यही कहूंगी कि माननीयवर जो भी हमारे भाई बहने हैं और मंच पर विराजमान जो है उनका स्वागत करें। अलका बहन जी ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में हम सभी उस प्यारे पिता परमात्मा का आह्वान के साथ बहुत दिल से प्यार से अपने दिलों में उसका स्वागत करते हैं। प्यारे बाबा आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे सम्माननीय आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी जो कुछ ही समय में हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनका भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच में उपस्थित हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर दीदी अंबिका जी, जैसा दीदी का नाम है वैसे ही हम सभी प्रैक्टिकल जब उनके समीप आते तो अनुभव करते हैं, जो सभी की संपूर्ण बनने की कामनाएं जो संगम पर हम लक्ष्य लेकर के आए हैं कि बाबा के बने, बाबा जैसा बने, उस कामना को पूर्ण करने वाली हम सबके प्यारी दीदी अंबिका दीदी जिनका आज हम बहुत प्यार से दिल से स्वागत करते हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबके बीच में दूर देश से यूएसए से आए हुए राजकुमार भाई जो हमें अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। और हम सबके बीच में हमारे अनुरूप भाई जो बहुत ही सुंदर स्पार्क की लहर को आगे बढ़ाते हुए सभी को अनुभवों की विभिन्न लहरों में सदैव लहराते हैं, बहुत विभिन्न युक्तियों से कैसे हम बहुत गहन अनुभूति करें इसका इनके पास बहुत बड़ा डाटा बन चुका है। ऐसे अनुरूप भाई का भी हम बहुत बहुत यहाँ स्वागत करते हैं। हम सबके बीच में एक छोटी सी मूर्ति हमारे प्यारे श्रीकांत भाई जो हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते, आप सभी को यहाँ उपस्थित करने के लिए उन्हीं का ही सहयोग रहा हुआ है। ऐसे प्यारे हमारे श्रीकांत भाई जो बहुत ही गुप्त रीति से कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो श्रीकांत भाई का भी तहे दिल से बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। विपिन भाई जो हम सभी के बीच में अपनी प्रेरणाओं को प्रेरित करने के लिए देने के लिए आए हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभा में बैठे हुए महानुभाव जो हमारे सामने प्रदीप भाई बैठे हैं, विनय भाई बैठे हैं और ऐसे ही अनेक स्पीकर बैठे हुए हैं, इन सभी का भी हम विशेष स्वागत करते हैं। और आने वाले चार दिन में जो मंच पर आकर के मन से हमें बहुत कुछ देने वाले हैं, उन सब दाताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़े दिल से कहो प्यार से आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबके बीच में आज दादी जी भी आने वाली है, हम दादी जी के आने के बाद जरूर दिल से स्वागत करेंगे। और दादी जी को इतना प्यार से हम याद करें जो दादी जी हमारी स्नेह से खींच के यहाँ पर आ जाए। हम सभी को बहुत बहुत प्रेरणाएं देख करके हमारी झोली भरेगी दादी, तो हम अभी से ही दादी के लिए विशेष अर्जी डालेंगे बाबा के पास कि दादी हम सबके बीच में जल्दी से जल्दी आ जाए। आप सभी को भी पुनः एक बार सबका स्वागत है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अलका बहन जी का। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे स्पार्क के हेडक्वार्टर माउंट आबू के कोऑर्डिनेटर विशेष श्रीकांत भाई जी से कि वो हमें अभी हमारी जो स्पार्क के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि बहुत भाई बहने नए आए हुए हैं तो वो भी इस नवीनता के साथ जुड़ जाएं, ऐसी प्रेरणाओं के साथ वे सभी को प्रेरित करें, ऐसी शुभ आशाओं के साथ उनको अनुरोध करती हूं कि वे हमारी इन गतिविधियों से हमें लाभान्वित करें। श्रीकांत भाई जी,
ओम शांति, वेरी गुड मॉर्निंग। ये आपके सामने जैसे बहन जी ने कहा चार दिन में हम क्या करने वाले हैं, एजेंडा ब्रीफिंग किया जाएगा। आप सबके पास एजेंडा है तो अपने सामने खोल के रखिए। मैं इसलिए इसको ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि चलते फिरते भाई बहने पूछते रहते हैं कि अभी क्या होने वाला है, तो इसको अवॉइड करने के लिए। चार दिन की अगर एजेंडा को हम समराइज करें तो आपके सामने हम चार प्रकार की बातें रखेंगे। सबसे पहले जैसे मीटिंग आपके सामने रखा गया है कि 21st एनुअल स्पार्क मीटिंग विथ योग एक्सपीरियंस, तो सबसे पहला रहेगा हमारा एक योग एक्सपीरियंस से संबंधित प्रोजेक्ट्स जो पुराने हैं। वो सभी जानते हैं कि जब भी स्पार्क की मीटिंग होती है हम तीन या दो तीन प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें बाबा हमें सीजन के अंतर्गत जिस बात पर फोकस कराते हैं और समय अनुसार ब्राह्मण परिवार में हर एक आत्माओं को जिस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ चाहिए उससे संबंधित प्रोजेक्ट लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं राजयोग अनुभूति प्रोजेक्ट्स। दूसरा स्टेप रहेगा हम कैसे सेवाओं की नवीन तरीके से प्लान करें जो हम सभी स्पार्कलर मिल करके देश विदेश में बाबा की यज्ञ की सेवा को आगे बढ़ाए, जिसको हम कहते हैं सेवा का प्रोजेक्ट। और एक इसके अंतर्गत रहेगा, जैसे आप लोग जो भी 2-3 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी यज्ञ में एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी प्रणेता है या तो कहे थिंकर जो है रिस्पेक्टेड रमेश भाई जी, जिसको हम कहे, उन्होंने एक टॉपिक दिया है CSR के नाम से, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे संबंधित भी एक प्रोजेक्ट रहेगा जिसके डिस्कशन, और साथ में आप सभी मिल करके जो भी हम यहाँ प्लान करते हैं, इस प्लान को कैसे प्रैक्टिकल आगे बढ़ाए, उसकी जो तैयारी पूरे मीटिंग की, ये 4 स्टेप में रहेगा। और वो 4 स्टेप को आपके सामने 4 पेज में लिखा गया है अलग अलग समय अनुसार। मैं उसको जस्ट रीड करूंगा, आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए। कई बार रमेश भाई कहते हैं कि आप भले पढ़े हो, भले जानते हो, लेकिन जब उसको रिपीट करते हैं, वो रिपीटेशन नहीं होता है, हैमरिंग होता है, याद करते हैं। तो मैं शुरू से रीडाइट करता हूं। जैसे पहला सेशन रहा आप सबके लिए 9:30 to 10 o'clock गाइडेड मेडिटेशन, आपको ठीक लगा वो? ठीक लगा? और स्पार्क की तरफ से ऐसे छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से योग के प्रयोग होते हैं, तो ऐसे ही आपको पूरे 4 दिन में अलग अलग सेशन में ऐसे छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे योग अनुभूति करने के लिए। ये जो सिखाया गया ऐसे करके भूल जाने के लिए नहीं, अभी आपने किया, आप यहाँ जाने के बाद आप अपने साथियों को, सेवा केंद्र की भाई बहनों को भी सिखाइए कि इस टाइप के भी छोटे छोटे स्टेप में हम योग की अनुभूति कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपने बहन जी को सुना, अलका बहन ने आपको वेलकम किया, अभी आपका एजेंडा ब्रीफिंग चल रहा है, 10:05 से 10:20 तक चलेगा, और 10:20 से 10:40 तक राजकुमार भाई आपको स्पार्क के बारे में बताएंगे। जो पुराने हैं वो जानते हैं, लेकिन उनको भी कुछ अपडेट्स मिलेंगे, जो नए हैं उनको पूरे स्पार्क की जानकारी मिलेंगी। उसके बाद 10:40 से 11 बजे तक भाई साहब आएंगे, भाई साहब हमें पूरा स्कोप रखेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस मीटिंग से हम सबसे, वो हम सुनेंगे, और उसके आधार पर भी कई प्लानिंग होंगे। 11:00 से 11:15 बजे तक हमारी प्रोग्राम का विधिवत उद्घाटन होगा कैंडल लाइटिंग के द्वारा, और 11:15 से 12:15 बजे तक रखा गया है, जैसे दादी आएंगे उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा, तो दादी हम सुनेंगे। जैसे बहन जी ने कहा कि हम सभी बड़े प्यार से दादी का आह्वान करें कि दादी तैयार हो हमारे बीच में आके हम सभी को आशीर्वचन दे। और उसके बाद 12:15 से 12:35 तक हम ग्रीटिंग सुनेंगे जो हमारे बीच में बैठे भाई बहने, और 12:35 से 12:50 तक जो भी हम नए प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करने वाले कोऑर्डिनेटर्स आपके सामने उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज होंगे, किस प्रकार चलेगा, आपको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद आपको टोली और गिफ्ट्स मिलेंगे, और लॉन्च और रेस्ट, हम इसमें बात कहना चाहेंगे, हर बार भी कहते हैं जब आपको लॉन्च और रेस्ट का टाइमिंग मिलता है, रेस्ट अगर आप नहीं करते हैं, आप कोशिश करें जो भी सीख रहे हैं आप उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, आप जो सुन रहे हो यहाँ पे, जो भी सुनाए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चन है, जब आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सेशन को, आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है, सुनते हैं, जो विचार से अगर मंथन नहीं होते हैं, फिर जाने के बाद भूल जाते हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हम कांटेक्ट में रहते हैं, भाई बहन मीटिंग पार्टिसिपेट किया, 5 दिन के बाद बोल कई बार पूछते हैं कि हम करें क्या आगे जाके, आगे क्या करें, तो सुनने के लिए ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आपको पूरा 4 दिन दिया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, फिर अगर पूछे कि क्या करें, इसका मतलब क्या है, इसलिए पूरा अटेंटिवली। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब आप लोग यहां बैठते हैं पूरे यज्ञ में, या आज इस कैंपस में कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ स्पार्क का प्रोग्राम, अगर अभी पूरे देश विदेश में कोई पूछे मधुबन में क्या चल रहा है, किसका नाम आएगा? पूरे अगर 9 लाख बाबा के बच्चे हैं, सभी की दृष्टि किस पर है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हम क्या स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, बाबा खास निमित्त बनाया है, भले आपको स्टेज के ऊपर 4-5-10 भाई बहने कुछ सुनाते हैं, पहले मनन चिंतन करके आए हैं, लेकिन आपका भी उतना फर्ज है, क्योंकि आपको बाबा ने भी निमित्त बनाया है, आप स्पार्क के मेंबर्स हैं, स्पार्क की रिसर्च हो, सर्विस एक्टिविटीज हो, जो कुछ भी होगा उसको आगे ले जाने के लिए निमित्त कौन बनेंगे? ये 4-5-6 लोग नहीं है, आप सभी। रमेश भाई तो कहते हैं कि आप सभी एम्बेसडर हो स्पार्क के लिए, है ना? तो आप उसी अलर्टनेस में सुनिए, आप कोई भी सुझाव हो आप बेझिझक बता सकते हैं, अगर हम सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं, आप लिखित रूप में दीजिए, हम उसको आगे सुधार जरूर लाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि लॉन्च रेस टाइम आप थोड़ा कोशिश करिए। और कई बार भाई बहने बोलते हैं कि ये एजेंडा काफी पैक्ड होता है, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, तो बात सही है। लेकिन जब हम साल भर में एक ही प्रोग्राम करेंगे, पूरे भारत देश विदेश भाई बहनों को बुलाएंगे, हम कोशिश करेंगे पूरे साल भर का प्लानिंग आपको दे। आप सोचिए 365 दिन की प्रोग्राम को अगर हम चार दिन में, इसका मतलब 24 आवर्स 25 आवर्स देना चाहिए तो कैसे दे। कोशिश करेंगे हर चीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इसलिए थोड़ा एजेंडा टाइट होता है। लेकिन आप स्पार्कलर हो, जागती ज्योत बनो चार दिन के लिए, थोड़ा नींद को त्याग करके, क्योंकि जो सुनेंगे फिर आप आगे जा करके ये सेवा आपके द्वारा वहां पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक से चार के बाद 4 बजे सूरज भाई आएंगे, उनकी जो प्रोजेक्ट है कर्मयोगी स्थिति, उस पर उस क्लास कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसके आधार पर फिर आगे की प्रोजेक्ट बनेंगे। और 5:30 से 6 ब्रेक रहेगा, उसके बाद छाया बहन जो स्पार्क को रूप मेंबर है वो द आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में आपको सुनाएंगे, कुछ प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद जो ज्ञान सरोवर में डेविड भाई रहते हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्सपीरियंस कराइए आप, तो आज आने वाले हैं, वो भी हम एक योग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 7:30 से 8:30 रहेगा डिनर, डिनर के बाद आप शार्प, क्योंकि हम प्रोग्राम ठीक समय पर शुरू करेंगे, ना 5 मिनट पहले ना 1 मिनट लेट, पूरा ठीक शार्प प्रोग्राम शुरू होगा। तो 8:30 से 9:45 तक प्रेजेंटेशन रहेंगे, जो हम लास्ट ईयर प्रोजेक्ट लिए थे 3 प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिजल्ट मिला है, कैसे वो रिजल्ट सफलतापूर्वक रन हुआ, उसकी आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा। और उसके साथ साथ एक प्रेजेंटेशन इसमें लिखा गया है स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन। आप सबको ये सूचना देते हैं कि स्पार्क की तरफ से एक एग्जीबिशन बनाया गया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल को लेकर के बाबा के ज्ञान को समझाया गया है। ये तो बहुत बड़ा सेशन रहेगा, लेकिन जो वेड़ियपन भाई है वो जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, पूरे साल भर में क्या क्या सर्विसेस हुए हैं उसकी रिपोर्ट सुनाएंगे। उसके बाद एक 2 सेशन रहेगा, 1.5-1.5 घंटे का, 3 घंटा, जो उसकी ट्रेनिंग लेकर के अपनी जगह पर ऐसा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो ये सेशन रहेगा। नेक्स्ट हम हर सेशन के बाद एक मेडिटेशन रखते हैं, गुड नाइट मेडिटेशन, तो आप सभी उसको भी अटेंड करें और सीखे कैसे बाबा को गुड नाइट किया जाता है, कैसे मेडिटेशन करते हैं। नेक्स्ट डे 2, 12 मार्च शनिवार, और अमृत वाला यहीं पे होगा, 4 से 4:45 गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा सूरज भाई कराएंगे, अगर सूरज भाई अवेलेबल नहीं होंगे और कोई गाइडेड कर मेडिटेशन के द्वारा आपका योग कराएंगे। फिर 9 से 9:30 क्रिएटिव योगा रहेगा, बीके लवली बेन जो लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर शक्तिनगर दिल्ली के, वो को योग कराएंगे। 9:30 से 11 ट्रेनिंग सेशन प्रोजेक्ट 2, जिसको हमारे आदरणीय बीके अंबिका बहन जी कोऑर्डिनेट करेंगे, टॉपिक है गोइंग बियॉन्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ आई एंड माइंड थ्रू इंटेंस प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। उसके बाद ब्रेक रहेगा 11 से 11:30, और 11:30 से 12 बजे तक मुरली के जो राजू भाई जो हमारे बड़े भाई हैं और ग्राम विकास प्रभाग के वो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर, साथ में मुरली की सारे कोऑर्डिनेटर वो करते हैं, वो हमारे सामने बाबा और बाबा की मुरली के बारे में उसके इम्पोर्टेंस बताएंगे और उसकी जरूरी कितना है इस समय स्वयं के पुरुषार्थ को आगे ले जाने के लिए। और 12:30 से 1:15 बजे तक भाई साहब हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे और उनकी जो आइडियाज हैं स्पार्क को किस टाइप की सेवा करना चाहिए, और कई बार आपको पता होगा भाई साहब कहते हैं कि हमको गवर्नमेंट के साथ भी चल के काम करना चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स होते हैं हमको कैसे करना चाहिए, वो सारे आइडियाज हमको मिलेगा। उसके बाद इसी के ऊपर एक छोटा सा ग्रुप बनेगा जो हम फाइनलाइज करेंगे कि स्पार्क की तरफ से कैसे नवीन सेवाएं किया जाए। उसके बाद 1:15 से 4 तक आपका रेस्ट रहेगा और 4:30 से 5:30 तक और एक सेशन होंगे, ट्रेनिंग सेशन ऑन राजू का प्रोजेक्ट 3 एक्सपीरियंसिंग ऑब्स्टेकल फ्री स्टेज फॉर वन स्पिरिचुअल वेलबींग, बीके अलका बेन और उनकी टीम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और 5:30 से 6 ब्रेक रहेगा और 6 से 7 बजे तक भाई साहब आएंगे हमारे बीच में, उनके साथ एक टॉक शो करेंगे जिसको रूपेश भाई कोऑर्डिनेट करेंगे कि राज्यों की विभिन्न स्थितियां क्या हैं और यज्ञ और बाबा के साथ उनकी जो संबंध है उससे संबंधित एक टॉक शो रहेगा। और 7 से 7:30 योग प्रयोग, हम 7 से 7:30 योग का प्रयोग रखा है, इसका मतलब जो भी स्पार्क की तरफ से प्रयोग हुए हैं वो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, ताकि आप सीखे और उसको अपने लेवल पे प्रयोग करें। 7:30 से 8:30 डिनर रहेगा, उसके बाद सेशन रहेगा 8:30 से 9:45 तक, ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बीके प्रदीप भाई दिल्ली से जो आए हैं, और राम कुमार भाई जो यूएसए में हैं, और यशवंत भाई जो मधुबन कोऑर्डिनेटर आईटी विंग और सीएसआर एक्टिविटीज की हेड हैं, तो वो सब प्रेजेंट करेंगे। अभी तक बाबा की तरफ से सीएसआर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हुए हैं और नेक्स्ट प्लान क्या है और स्पार्क को उसमें क्या करना चाहिए, और आपसे सुने। और जो इस क्षेत्र से संबंधित है या कोई कंपनी में काम करते हैं या कंपनी से संबंधित, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम इसके लिए बहुत अच्छा प्लान कर सकेंगे। उसके बाद 9:45 to 10:00 रहेगा गुड नाइट मेडिटेशन। Day 3 13 मार्च रविवार को अमृत वाला टाइमिंग फिक्स है 4 से 4:45, गाइडेड मेडिटेशन बाय बीके शिल्पा, फैकल्टी स्पार्क विंग, कल्याण महाराष्ट्र, और 9 से 9:30 तक फिर गाइडेड मेडिटेशन रहेगा बीके भारती लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग शहादा महाराष्ट्र। 9:30 से 10:30 तक एक प्रेजेंटेशन रहेगा। ये जो सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि हम जब स्पार्क में रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारे भाई बहने साइंस की बात को लेकर के, खास करके टाइम साइकिल, समय कैसे रिपीट होता है, बाबा कहते हैं कि जो हुआ वही फिर कब रिपीट होता है, हूबहू 5000 साल के बाद। तो एक भाई को एक काम दिया गया, तो उन्होंने 1 साल इस पर मेहनत किया है दुनिया के तरीके से, और हमारी भारत में जो स्क्रिप्चर्स हैं या साइंस में इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक कंपाइलेशन प्रेजेंटेशन आपके सामने रहेगा ताकि आप उसकी समझ रखें कि इसको सही गाइडलाइन दे सकते हैं। उसका टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ टाइम साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ बाबाज नॉलेज एंड इंडियन स्क्रिप्चर्स। और इसके साथ साथ और एक टॉपिक कवर किया गया है डायनासोर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं डायनासोर और एवोल्यूशन थ्योरी, बहुत सारी बात होती है, तो एक प्रेजेंटेशन रहेगा आपके सामने। और उसके बाद साइंस बिहाइंड राजयोग एंड इट्स प्रिंसिपल। आप लोग सभी दुनिया में जॉब करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कोई अलग अलग काम करते हैं, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और आपको पता हो कि 2014-15 से आगे पूरी दुनिया में मेडिटेशन के ऊपर बहुत तरीके से रिसर्च हो रहे हैं, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है वो तो और ज्यादा फोकस्ड है उसमें। और आज जब रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो पता चलता है हम जिस पर नहीं करते हैं उस पर दुनिया काम कर चुकी है, बस उनको एक ही चीज नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मेडिटेशन पर काम करते हैं। और साथ साथ स्पार्क की तरफ से उसी टाइप के क्या रिसर्च हो रहा है, ये दोनों को कंबाइन करके प्रेजेंटेशन बनाया गया है, जिसको स्नेहा बेन बैंगलोर की जो स्पार्क कोरूप मेंबर है वो प्रेजेंट करेंगे। और ये सबको अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि आपके कई खास करके टीचर बहने जो हैं, आपके सामने स्टूडेंट्स आते हैं, आपको इस सारे सवाल का सामना करना पड़ता है, साइंस क्या है, साइंस के बारे में क्या कहता है, वो सारी आपको सार रूप में मिलेगा। और उसकी हम तैयारी ऐसे करते हैं कि सेशन के बाद अगर टीचर बहने पसंद करेंगे तो उनके लेवल में वहां पे जाकर के सेंटर पर इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जा सकता है। उसके बाद 11:30 से 11:45 ब्रेक रहेगा, और 11:45 से 1 बजे तक पैरेलल सेशन होगा, वो 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं हम हर साल 3 प्रोजेक्ट लेते हैं, इस बार 3 प्रोजेक्ट लिया गया है। अगर आप लास्ट पेज में आएंगे, लास्ट पेज में आपकी पेज नंबर 3 में सारे प्रोजेक्ट के नाम लिखे गए हैं, और प्रोजेक्ट के गाइड कौन बनेंगे और कोऑर्डिनेट कौन करेंगे, वो सब इसमें डिटेल्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले आपको 1.5 घंटे का सेशन मिलेगा ट्रेनिंग, और उस सब्जेक्ट से संबंधित बाबा की गाइडलाइंस क्या है और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ क्या कर सकते हैं, वो एक कॉमन प्रेजेंटेशन रहेगा। उसके बाद ग्रुप डिवीजन होगा, और हम चाहेंगे सभी माना इस 3 प्रोजेक्ट में इवनली समान रूप से पार्टिसिपेट करें, ताकि आप एक एक सेंटर, मान लीजिए 10 भाई आए हैं, कोई 4 भाई आए हैं, तो आप 2 भाग हो जाए या 3 भाग हो जाए, ताकि आप उस प्रोजेक्ट में क्या चलेगा आपको उसकी डिस्कशन से लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था लास्ट मीटिंग में कि आप चाहो तो 1 प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, चाहे 1 से अधिक प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा ट्रेनिंग सेशन के बाद पैरेलल सेशन में, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप पेज 2 में आ जाए, डे 3 और 11:45 से 1 बजे तक पैरेलल सेशंस रहेगा। जैसे यहाँ पे रूम नंबर लिखे गए हैं, एक यहाँ पे होगा, एक ऊपर हॉल में, बाकी साइड में इस तरफ सेमिनार हॉल नंबर 1, ऊपर 2-3 है। जैसे अनाउंसमेंट होगा कौन सी ग्रुप कहाँ बैठेंगे, आप उस हिसाब से आप सिलेक्टेड ग्रुप में बैठिए। और फिर 1 से 4 बजे तक लॉन्च एंड रेस्ट रहेगा और 4 से 5 तक प्रेजेंटेशन सेशन रहेगा और 5 से 6 रमेश भाई जी आएंगे हमारे बीच में। उसमें हम जो भी कॉन्फ्रेंस हमारी, जैसे आपको पता है हम हर साल कॉन्फ्रेंस करते हैं सर के नाम से, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स, उस कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा और पहले जो कॉन्फ्रेंस हुए उसकी रिपोर्ट आपको सुनाया जाएगा। और 6 से 6:30 ब्रेक रहेगा, 6:30 से 8 क्लास और गाइडलाइंस बाय बीके संतोष बेन रशिया, वो टॉपिक लेंगी लिविंग यज्ञ, हम कैसे यज्ञवश बन करके यज्ञ की पालना करें और स्वयं की पालना करें, उससे संबंधित हम क्लास मिलेंगे। 8:45 से 10 बजे तक लोकल चैप्टर प्रेजेंटेशन होंगे और उसके बाद 10 बजे गुड नाइट मेडिटेशन। डे 4 14 मार्च सोमवार 4 से 4:45 क्रिएटिव अमृत वेला अंबिका बहन जी कराएंगे। उसके बाद 9 से 9:30 क्रिएटिव योगा बीके शांताराम भाई जलगांव, उनकी वहाँ लोकल चैप्टर में जो अलग अलग योग प्रयोग होते हैं वो भी आप एक उसमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। 9:30 से 10:30 स्पार्क सर्विस एट DRDO, स्पार्क सर्विस एट एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन, अदर रिसर्च प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पार्क की जो कोलाबरेटिव रिसर्च चल रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, उसके एक प्रेजेंटेशन होगा, जो खास DRDO से एक साइंटिस्ट आएंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। और साथ में 10:30 से 11 पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट, अंबरनाथ ग्रुप में बीके तनुजा बहन और उनकी जो भाई संतोष ये प्रेजेंटेशन देंगे। 11 से 11:30 ब्रेक रहेगा, 11:30 से 1 राज्यों का एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पैरेलल सेशन, ये सेशन रहेगा, जैसे पहले आप डिस्कशन करेंगे इसको प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने के लिए। उसके बाद लॉन्च और रेस्ट रहेगा 1 से 4 और 4 से 5:30 प्रेजेंटेशन सेशन होंगे जो लोकल चैप्टर या इंडिविजुअल लेवल पर जो रिसर्च हुए हैं। इस बार हमने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, जेनेटिक पर कैसे रिसर्च करें। हमारे बीच में एक बहन आई है अहमदाबाद से, बीके मानसी बहन, वो जेनेटिक में PhD की हुई है और हमने काफी समय से डिस्कशन किया कि एक नया एरिया डेवलप होना चाहिए, दुनिया में इस पर रिसर्च भी हो रहे हैं। तो स्पार्क की तरफ से राजयोग का प्रभाव हमारे जीन लेवल पर क्या होता है उसकी स्टडी किया जाएगा, जिसका हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसके प्रेजेंटेशन होगा। ये इसलिए किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ स्पार्क भाई बहन आए हैं स्पार्क के, जो माइक्रोबायोलॉजी या तो जीन या बायोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाद में जो डिस्कशन होगा हमको इसमें आपसे मदद मिलेगा। 5:30 से 6 ब्रेक रहेगा और 6 से 7 भाई साहब आ जाएंगे, बहन जी और जो भी बड़े रहेंगे, हम मीटिंग की जो समापन सत्र की ओर चलेंगे, उससे पहले हम आप सबकी फीडबैक सुनेंगे और जो जो प्रोजेक्ट हम डिजाइन किया है 4 दिन के अंतर्गत उसकी सार सुनेंगे और हमारे बीच में जो भी बड़े रहेंगे उनके आशीर्वचन लेकर हमारी मीटिंग को समापन करेंगे। और साथ हमने लास्ट में जैसे 9 से 9:45 एक सेशन रखा है, जो बॉम्बे की भाई जो राजीव गुप्ता जी जो प्रेजेंट करेंगे, कुछ सेशन अगर रह जाएगा यही जो सीक्रेट ऑफ टाइम साइकिल के बारे में, वो सेशन हम लास्ट में रखेंगे। और जैसे लास्ट में नोट में रखा गया है, द डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग विथ दादीज एंड सीनियर्स इज सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी, कि कई बार बड़े समय देते हैं फिर उनकी स्वास्थ्य की ख्याल रखते हुए प्रोग्राम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, आप सभी ध्यान में रखें। प्रोग्राम जो आपको बताया गया इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, स्पीकर जिस प्रकार से अवेलेबल होंगे। और ये तो आप सब देख लिए हैं हमारे कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे और जैसे आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा उसी हिसाब से अपनी माइंड तैयार करें। हम चाहेंगे जहां से ज्यादा भाई बहन आए हैं आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हर सेशन में पार्टिसिपेट करें जो भी पैरेलल ग्रुप बने, ताकि आप मैसेज ले और मैसेज को अपने सेंटर में भाई बहनों को कम्युनिकेट कर सके। ओम शांति। लास्ट में एक बात कहेंगे, इस पार्क का एक रहा है, अच्छा लगता है सबको कि समय से पहले आने का है ना, जैसे हमारा सेशन जो भी टाइमिंग है हम चाहेंगे कम से कम 5 मिनट पहले सभी आ जाए और सेशन पूरा अटेंड करें। आप इतना मेहनत करके अपने कारोबार छोड़ के आए हैं तो और तो कोई कारोबार है ही नहीं, इसलिए पूरा फोकस यहां करें। और सीखे और सीख करके दूसरों को सिखाए जरूर। ओम शांति।
बहुत शुक्रिया आदरणीय श्रीकांत भाई जी का। अभी कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच पधारे राजकुमार भाई जी, जो पिछले 25 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं और स्पार्क से आप स्पार्क के आदि से ही जुड़े हुए हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि 21 साल आज हम अपनी इस एनुअल मीटिंग को आरंभ कर चुके हैं, तो आप भी अपनी जो गतिविधियां अपनी रीति से ही कर रहे हैं और यूएसए के अंदर भी आप विशेष कार्यकर्ता हैं कि वहां पर अपने ही स्थान को बाबा की गीता पाठशाला बनाकर विशेष योगदान अनेक आत्माओं तक देने का आप कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम स्पार्क की विशेष गतिविधियों के बारे में और कार्यप्रणाली के बारे में सुनेंगे आदरणीय भ्राता राजकुमार जी।
ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग तो काफी पहले हो चुका है लेकिन ऑलमोस्ट एक घंटा और थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया और मैं देख रहा हूँ कि काफी थोड़ी सी, बहुत नहीं, थोड़ी गर्मी भी लगी हुई है। तो जैसे गर्मी जब ज्यादा होती है तो नींद जल्दी आती है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसी होता है, हमसे ऐसी होता है कि गर्मी जब होती है तो नींद ज्यादा आती है। तो ऑब्वियसली आई थिंक सब लोग से भी वही होता होगा। बट वी हैव गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हम सब स्पार्कलर्स हैं, स्पार्क में आए हैं। स्पार्क क्या चीज है? बिफोर आई गो अहेड, एक शो ऑफ हैंड्स, पहली बार स्पार्क में आए हुए कितने हैं? ऑलमोस्ट मोर देन 50%। तो स्पार्क आपने सुना तो होगा ही, द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्क इज स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर। बाबा ने बहुत पहले कहा था कि अपनी अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के रिसर्च करना है हमें, तो इन्हीं प्रेरणाओं को लेके चार स्तंभ, दादी प्रकाशमणि, भ्राता जगदीश भाई, रमेश भाई जी और उषा बहन जी, चारों को एक थॉट आया कि रिसर्च लेबोरेटरी हम तैयार करें जिसमें रिसर्च हो और बाकी ब्राह्मणों को भी उसका फायदा मिले। यह सोच के February 10, 1995 में स्पार्क का फाउंडेशन लगा और 1995 से 1999 तक स्पार्क में रिसर्च लैब की तौर से रिसर्च चलता रहा और 1999 में, और जैसे जो स्पार्क का फाउंडेशन हुआ तो स्पार्क की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक विजन मिशन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव। स्पार्क की दृष्टि यही थी कि बिल्डिंग बेटर टुमारो थ्रू अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ज्ञान बाबा जो देते हैं हमें उसे हमें रोज की निजी जिंदगी में किस तरह से अप्लाई करना है इसका स्टडी किया जाए। और मिशन यही था कि जो रिसर्च को इस तरह से डेवलप किया जाए और उसमें से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स निकाले जाए जिससे कि समाज को भी फायदा हो और उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो होता है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो बेनिफिट्स होता है उसका फायदा लें। और एम एंड ऑब्जेक्टिव था कि आजकल साइंटिफिक नॉलेज काफी बढ़ चुकी है और एक ये है कि साइंटिफिक नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों को का मिक्सचर हो, दोनों का मिक्सचर है तो उसमें रिसर्च में और बढ़ोतरी होती है। 1999 में स्पार्क ने लोकल चैप्टर शुरू किया। अब लोकल चैप्टर यह है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ भाई बहनों को इंटरेस्ट है तो सब साथ में आते हैं, उसे लोकल चैप्टर बनाते हैं। तो लोकल चैप्टर सबसे, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा नॉलेज जाता है, सबसे पहला लोकल चैप्टर जो खुला था वो पुणे में खुला था। और मुझे ये कहते हो कि काफी गर्व महसूस होता है कि अनुरूप मराठे भाई जी वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फर्स्ट लोकल चैप्टर ऑफ स्पार्क। एंड हमारा भी ये सौभाग्य था कि उनके अंडर में 1999 से ऑलमोस्ट 2003 तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लोकल चैप्टर में मीटिंग्स होते हैं, जैसे स्पार्क में हम जुड़ते हैं तो उसमें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम एक ग्रुप करें और ग्रुप से मीटिंग्स हो रेगुलरली। जैसे श्रीकांत भाई ने अभी कहा था, आए मीटिंग में सुने और चले गए तो भूल जाते हैं, अगर उसका मंथन नहीं होता है, उस पर विचार नहीं करते हैं, उस पर रिसर्च नहीं करते हैं, तो भूलने की संभावना बहुत होती है, बिकॉज मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। तो मेमोरी को अलाइव रखने के लिए, रिवाइव करने के लिए उसे मंथन करना बहुत जरूरी होता है। तो उससे मीटिंग होती है, जैसे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होता है, अलग अलग है, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स अपने लोकल चैप्टर में मिलते हैं और फिर उसका रिपोर्ट्स हेड ऑफिस को भेजते हैं, उस हिसाब से फिर बाद में हेडक्वार्टर्स में जो मीटिंग होती है, जैसे वार्षिक मीटिंग होती है, यहाँ पे हुई अभी, और लोकल चैप्टर की मीटिंग्स होती है, कोर ग्रुप मीटिंग्स होती है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं और सबका समरी एंड ऑफ द ईयर में निकाला जाता है। और फिर जैसे श्रीकांत भाई जी ने बताया था कि स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च सर ग्रुप कॉन्फ्रेंस जो है वो भी पिछले कई सालों में ऑलमोस्ट 20 कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, अभी तक 20 हुए हैं, और फिर डायलॉग्स एंड वर्कशॉप बीच बीच में होते रहते हैं। और जैसे आज भी 3 प्रोजेक्ट्स का है, 3 प्रोजेक्ट्स भी लेंगे, प्रोजेक्ट वर्कशॉप भी चलते हैं, पब्लिकेशंस हैं, और किसी को इंटरेस्ट पब्लिकेशंस में होगा तो स्पार्क ऑफिस में या इधर भी बुक स्टॉल रखा हुआ है, काफी पब्लिकेशंस छपे हुए हैं। और फाइनली कम्युनिकेशंस, नेक्स्ट जैसे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप मैंने कहा था, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में 6 टिपिकल ग्रुप्स हैं जो थे, जो शुरुआत में भी थे, अभी ग्रुप्स बढ़ चुके हैं, जैसे सीएसआर भी ऐड किया हुआ है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में, और न्यू एवेन्यूज इन गॉडली सर्विस भी ऐड किया हुआ है, लाइक राजयोगा लैब का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था 1999 में लिया हुआ था मनसा सेवा का, और उसके ऊपर किताब भी, पहली स्पार्क की पहली किताब जो छपी थी मनसा सेवा के ऊपर उसी टाइम पे छपी थी पहली किताब। मनसा सेवा था, संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन था, संस्कार री इंजीनियरिंग था, ये सब राजयोगा लैब के अंडर में आया था। तो फिर बाद में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आया था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में लाइक मूल्य पे आधारित शिक्षा किस तरह से स्कूल्स और कॉलेजेस में दी जाए, इसके ऊपर रिसर्च हुआ था। इसमें एक अलग से सब टॉपिक भी था, मॉरल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक्चुअली हमें तो बहुत बोरिंग लगती थी जब स्कूल में थे, तो मैथमेटिक्स को बच्चों को किस तरह से इंटरेस्ट दिलाया जाए और उसमें वैल्यू किस तरह से लाया जाए वो रिसर्च किया हुआ था। तीसरा था मेडिसिन ग्रुप जो शुरुआत में था किडवई मेमोरियल हॉस्पिटल, यहां पे रिसर्च किया हुआ था कैंसर पेशेंट्स पे और टर्मिनली इल पेशेंट्स के ऊपर, और रिजल्ट्स काफी अच्छे हुए थे। और दिस वाज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट टेकन अप बाय स्पार्क एट दैट टाइम। वैल्यूज इन बिजनेस, डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, आज के पीरियड में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं वक्त बहुत कम है, डिजास्टर कभी भी आ सकता है। और हम देखते हैं कि दुनिया में कितने सारे डिजास्टर होते रहते हैं आए दिन, ये सब तो रिहर्सल्स है, बट ये रिहर्सल्स को पार करने के लिए किसी भी प्रकार के डिजास्टर कह के नहीं आते, अचानक आ जाते हैं। तो उस डिजास्टर को पार करने के लिए हम किस तरह से, हमारी तैयारी कैसी हो, गवर्नमेंट की, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की, सब लोग की तैयारी तो रहती है, वो अभी से ही तैयारी, पहले से तैयारी करके रखे, मगर हम किस तरह से, हम तैयार हैं क्या? कल मेरे साथ अगर कुछ डिजास्टर हो जाता है तो मेरी स्टेज उस टाइम पे क्या होगी? स्टेज स्टडी होगी या स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्या है वो हमें रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नेचुरल साइंसेस। यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे, दिस इज अ व्यू ऑफ द स्पार्क ऑफिस इन ज्ञान सरोवर। जी एंट्री का हॉल है और फिर किस तरह से उधर मशीन्स पे रिसर्च किया जाता है, एनालिसिस होती है। और आगे चलते हुए जो फोटोज दिखाए गए हैं वो स्पार्क ऑफिस ज्ञान सरोवर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और आपको ये भी बताते हुए खुशी महसूस होती है कि स्पार्क ऑफिस में अभी एक हमने लैब भी चालू किया है। लैब का ये लैब के उद्घाटन के चित्र हैं, जहाँ पे इसरो और डीआरडीओ के ऑफिशियल्स आए हुए थे उद्घाटन के समय। इस लैब में मॉडर्न इक्विपमेंट रिसर्च के लिए लगाया जाएगा और जो हमारे रिसर्च है उसे किस और नए तकनीक से आगे बढ़ाने की बढ़ाएंगे। ये उद्घाटन का और एक पिक्चर है। और यहाँ देखेंगे आपकी स्पार्क की एनुअल मीटिंग और रिट्रीट सभी, जैसे आज आपको बताया कि ये 21वीं वार्षिक मीटिंग है, इसके पहले 20 मीटिंग ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया और भारत में अब्रॉड। और 10 स्पेशल मीटिंग्स हुए सिर्फ भारतवासियों के लिए। और इन मीटिंग्स में करीब 14,000 बीकेज और भारत के और 1600 बीकेज अंतर्राष्ट्रीय डबल विदेशी इन्होंने भाग लिया है। और अभी तक जैसे है, जैसे मैंने कहा था, पब्लिकेशंस है करीब 250 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स और बुक्स ये सब छपे हुए हैं। और इन सब का अगर आपको इन सब को देखना है ये, तो बाहर भी बुक स्टॉल लगा हुआ होगा और स्पार्क के ऑफिस में शांतिवन में जो टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर है उसमें भी पब्लिकेशंस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है जो उसका लाभ आप ले सकते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी रिसर्च सर कॉन्फ्रेंस का अभी तक 20 कॉन्फ्रेंसेस माउंट आबू, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद में कंडक्ट किए हुए हैं। और सर का एक सर कॉन्फ्रेंस की खासियत एक है कि उसके जो पार्टिसिपेंट है उनका प्रोफाइल रहता है कि एक तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, पीएचडीज होते हैं, या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, या फिर मेडिकल डॉक्टर्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डॉक्टर्स और एमएस किए हुए और इक्विवेलेंट डिग्री, जैसे प्रोफाइल होता है, हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स का कॉन्फ्रेंस होता है ये। बाकी अचीवमेंट, स्पार्क के अचीवमेंट, एक प्रोजेक्ट लिया हुआ था लिविंग स्पिरिचुअलिटी फॉर अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, ये 2005-2006 में लिया हुआ था ये। और इसके अचीवमेंट्स थे, काफी वीआईपीज और इंटेलेक्चुअल्स को बेनिफिट मिला और उसमें सिग्नेचर कैंपेन भी किया हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट अबाउट 50 लाख सिग्नेचर मिले हुए कलेक्ट किए हुए थे, 5 मिलियन। एंड राजीव का लैब में साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव फंक्शंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है। ये पिक्चर्स कुछ उसी के ही हैं। और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन हमारा है, जैसे श्रीकांत भाई जी कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन है हमारे, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे डीआरडीओ के साथ और निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ के साथ किया हुआ था, उन प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स कहिए या पब्लिकेशंस कहिए स्पार्क ऑफिस में आप लोग को मिलेंगे। और एक बात कहने में बहुत खुशी होती है कि जैसे हम दुनिया में सुनते हैं डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि ये मेडिसिन लिए तो ये बीमारी या ये ठीक हो जाएगा, एक प्रमाण है उनके पास कि इस दवाई से ये बीमारी ठीक होती है। हम भी पहले कहते थे कि योग से सेहत अच्छी होती है, मगर इसका प्रमाण नहीं करते थे क्योंकि बाहर वाले योग से बताते थे। अभी हम गर्व से कह सकते हैं कि यस, ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन से बहुत सारी बीमारियां कहिए या जो लॉन्ग टर्म इलनेस है वो ठीक हो सकते हैं। इसका प्रमाण डीआरडीओ के प्रोजेक्ट से ही हुआ है, जहां पे वो रिसर्च करते हैं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर और किस तरह से मेडिटेशन का इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है, उसका रिसर्च किया हुआ है। जो साइंटिस्ट भाई इस सत्र के दौरान आएंगे वो आप लोग को संक्षिप्त में समझाएंगे। तो ये स्पार्क की गतिविधियां थी और जैसे जैसे आप मीटिंग में रहेंगे तो आपको और उसके डिटेल जानकारी हासिल होगी, और भी अगर जानकारी लेना चाहें तो आप स्पार्क ऑफिस में श्रीकांत भाई जी से संपर्क कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर विथ यू। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाई जी का। अब मैं अनुरोध करूंगी, हमारे आदरणीय रमेश भाई जी भी आए हैं जो इस स्पार के चेयरपर्सन हैं, और हम यही चाहेंगे कि आज इस विशेष एनुअल मीटिंग के अंदर जो थीम लेकर के हम चल रहे हैं, उन्नत मौलिक सदा नवीनता की ओर प्रगतिशील रहते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए नए आयाम हम कैसे अपने इन स्पार्क की गतिविधियों के द्वारा जोड़ें, उसकी बहुत ही सुंदर रूपरेखा को लेकर आज भाई जी हम सभी को अपने विचार भी देंगे, मार्गदर्शन भी देंगे। तो इसलिए ऐसे आदरणीय भ्राता जी का हम तहे दिल से पहले तो स्वागत करते हैं और आज के इस मार्गदर्शन जो उनसे हम पाना चाहते हैं कि किस तरह से अपने जीवन के अंदर इस नए आयाम को हम जोड़ दें। तो आदरणीय रमेश भाई जी से हम निवेदन करते हैं, हम उनसे ही सुनते हैं।
ओम शांति। मुझे ये समझ में नहीं आया मेरा स्वागत क्यों हो रहा है। मैं तो आप सबके साथ का हूँ, साथी हूँ, साथी का स्वागत कैसे हो सकता है मेरे को मालूम नहीं है, परंतु आप लोगों ने कहा कि स्वागत कर रहे हैं तो ठीक है, मानना पड़ता है क्योंकि बड़ों की आज्ञा माननी पड़ती है। बाकी तो बहुत अच्छी बात है, इतने सब आए हुए हैं। आपको मालूम होगा पहले जो है इसका आयोजन जो है स्थान जो था वो दादी मीटिंग हॉल था, परंतु पिछले हफ्ते में ये हमारी एक मीटिंग थी इंटरनेशनल, उसमें मैं आया हुआ था तो यहाँ हमने देखा, पूछा हमारे यहाँ के जो कंट्रोलर भाई है उसको कि तो क्या 11, 12, 13, 14 खाली है, उसके कारण मुन्नी बहन के पास हमारी अंबिका बहन और श्रीकांत भाई आदि गए और फिर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आज सब आप बैठे हुए हैं, अच्छे से बैठे हुए और इसके कारण उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा क्योंकि कंफर्टेबल ये भी है, यहाँ भी है, शांति भी है वायुमंडल में, वहां तो एकदम दादी मीटिंग हॉल के बाजू बाजू में भी बहुत घमसान रहता है। इसके बदले में आप यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ आपको कि चेंज ऑफ वेन्यू जो हुआ है वो आप सबको पसंद होगा, रहना करना भी इधर ही आजू बाजू में होता है। खाली एक बात की तकलीफ होती है भोजन के लिए, फिर भी वहां ही जाना पड़ेगा, भोजन यहाँ पर हम लोग नहीं खिलाते हैं, बाकी सब बातें वहां पर होगी, यहाँ होगी, खाली भोजन की बात आने जाने की तकलीफ होगी, तो थोड़ा पैदल भी करना चाहिए, और जो जो पैदल नहीं कर सकते उनके लिए वाहन भी रखे हुए हैं, तो इस प्रकार से कारोबार होगा। दूसरा हमको ख्याल में ऐसा आया कि आप जानते हैं अप्रैल की 8 तारीख से यज्ञ की वार्षिक सभा भी होती है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। 1700-1800 भाई बहन आते हैं हर वर्ष, वहां पर भी संख्या बढ़ती जाती थी, परंतु हम लोगों ने नक्की किया, स्थगित कर दिया कि अभी 1700 या 1800 जो है उनसे बाद में नया कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पाएंगे, कोई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं परंतु बाकी नया नहीं, इस प्रकार से कारोबार करेंगे। तो इस प्रकार से वो मीटिंग जो होगी उसके लिए हम यहां भी ऐसी कोई ऐसी चर्चा करें, ऐसा बनाए प्रोग्राम और ऐसे सजेशन दे मीटिंग के कारोबार करने वालों को कि हमारी वार्षिक मीटिंग है उसके अंदर यहां से ही भी हम लोगों ने दिए हुए सुझाव उनके भी एजेंडा के अंदर आ जावे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो समय प्रति समय परिवर्तनशील होती है, कईयों को उसका ज्ञान भी नहीं होता है, क्योंकि कारोबार इतना विशाल हो गया है कि कारोबार इतना विशाल होने के कारण कई बातें सबको मालूम नहीं होती है। आप जानते हो मैं मकानों का प्रॉपर्टीज के करेक्शन में मेरे को ड्यूटी मिली हुई है, कई बहनें हैं 30-30, 40-40 वर्ष के बाद भी कहती है हमें मालूम नहीं था कि प्रॉपर्टी कैसे खरीद किया जाए, हमने अपने नाम पर ले लिया, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन सबको मिल जावे और सबके पास मिनिमम बेसिक लीगल नॉलेज भी होना चाहिए, कानून का होना चाहिए ज्ञान, कारण कि लॉ में कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो इसके कारण जो भी देश का कानून बदलता रहता है उस बदलते हुए कानून के मुताबिक हमारा कारोबार भी हो, क्योंकि बाबा ने भी कहा हुआ था कि आप पराये राज्य में हैं, अपना राज्य नहीं है, पराये राज्य में है तो पराये राज्य के अंदर रहते हुए भी आपको पराये कानून जो है उसका भी पालन करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से ये बातें सब करे तो अच्छा है, नोट करके रखे, और इसलिए हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं कि ताकि इस टाइम के बजट के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ, कई बातों का अच्छा परिवर्तन हुआ है, कई बातों में कानून सख्त बनता जाता है, तो इस प्रकार से होता है, तो इसलिए उसके बारे में भी सबको ज्ञान होगा। तो मैं समझता हूँ उस ज्ञान के अंदर या कानून के अंदर जो भी बातें होती है उसकी भी रिसर्च कर करके दैवी परिवार को इन्फॉर्म करना, ये भी शायद पार्क का एक काम हो सकता है, ताकि दैवी परिवार जो यहाँ नक्की करता है, यहाँ बैठ के करता है, उसका उनों को भी मालूम रहे और सबका उसका ज्ञान रहे। तो हम जो है कानून के कारोबार के अंदर मिनिमम कॉस्ट के आधार पर मिनिमम प्रॉब्लम्स के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये भी है। बाकी तो यहाँ हम रिसर्च जो करते हैं उसका कारोबार भी अच्छा हो सकता है, CSR जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसी क्षेत्र में भी कई हमारे बहन भाई मेहनत करते हैं, कई सेवा केंद्रों को वहाँ के MLA MP आदि जो भी है उसे फंड्स मिलते हैं, कई कॉरपोरेशन से भी फंड्स मिलते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है लातूर के अंदर कैनरा बैंक के द्वारा हमारे कारोबार को एक्सेप्ट इन्होंने किया और इन्होंने वहां पर एक वाहन भी दिया, इस प्रकार से होता है कई जगह पर, और जगह पर भी होता है, ये सब बातें भी होती है। कई जगह पर नेगेटिव बातें भी होती है क्योंकि हमारे देवी परिवार में अनेक प्रकार की बातें होती है, अनेक प्रकार के बहन भाई आते हैं, तो यहाँ इसलिए भी आते हैं कि इतने यहाँ भोले भाले बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, उसके अंदर भी वो लोग अपनी जिसको कहते हैं फ्रॉडुलेंट एटीट्यूड जिस प्रकार से कर करके नुकसानकारी बातें भी कई लोग करते हैं, तो उसके कारण ऐसी बातों का भी सबको ध्यान रहे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से मधुबन से एक सर्कुलर भी भेजा था कि सेंटरों पर पहले बोर्ड रहता था कि आप सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहन आपस में पैसे की लेन देन न करें, जो भी करना हो प्राइवेट पर्सनल लाइफ पर करें, और अगर करें तो भी आपका उसके अंदर हमारी बहनों को इन्वॉल्व न करें, क्या कहेंगे बहन ने ऐसा किया है, बहन ने ऐसा कराया, इस प्रकार की बातें जो होती है वो न होनी चाहिए। इस प्रकार से लेन देन का धन का भी कारोबार, क्योंकि आप जानते हैं धन ऐसी चीज है शास्त्रों में उसको माया भी कहा हुआ है, तो इसके कारण धन का सदुपयोग भी हो सकता है तो दुरुपयोग भी हो सकता है, तो ऐसी प्रकार से ऐसा धन का दुरुपयोग न हो, और हमारे दैवी परिवार के सभी भाई बहनों का बहुत अच्छे जिसे कारोबार में मददगार बन जाए, सब मिल जाए तो अच्छा है। कई बार हम नहीं चाहते हैं परंतु लोग जो है हमारे कारोबार के अंदर विघ्न डालते रहते हैं। ये बेंगलोर के अंदर ही एक सेंटर है, वहां की एक माता जो है उसने अपना मकान जो है बाबा को देने के लिए विल में लिख के दिया। हमने बहुत बार कहा उसको कि भाई बहन जीते जी कर लो तो अच्छा है, तो कहा कि नहीं मेरा तो कोई रिश्तेदार है नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार है नहीं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं विल से ही देना चाहती हूँ। और बहन ने विल से लिख करके दिया, उसने शरीर छोड़ा और थोड़े दिन के बाद उसका कोई डिस्टेंट रिलेशन वाला उन्होंने झूठा क्लेम कर दिया विल का और कोर्ट में पेश कर दिया। अभी मैटर जो है लिटिगेशन में है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपना तन मन धन जो है उसको सफल करने का कारोबार जो भी करना चाहिए जितने भी ऐसा कारोबार करे ताकि बाद में कोई समस्या न हो। और इसके कारण जो भी यहाँ बैठे हुए हैं और आपके द्वारा यहाँ यज्ञ के सभी जो भी बहन भाई है उनको हमारा ये सूचन है कि अपनी संपत्ति का अपनी जीते जी व्यवहार के अंदर अर्थात भविष्य का व्यवहार कैसे हो उसका भी प्रबंध करना चाहिए। ये भी एक जरूरी बात है, समझने की बातें हैं ताकि रिश्तेदारों के साथ रहते हुए भी कैसे हम कारोबार करें। एक दूसरी बात भी ये है कि हमारा ज्ञान ऐसा कहता है कि हमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो छोड़ना है वो विकारों को छोड़ना है, और इसलिए ही हमारे घर ज्ञान के अंदर संन्यास आश्रम के या संन्यास बनने की बात नहीं होती परंतु विकारों का संन्यास करना होता है। इस प्रकार की ये बातें जो है एक इसके साथ साथ बाबा ने भी इस टाइम पर भी मुरली में जो कहा 7 तारीख की कि आपको भविष्य की कमाई का जो है उसका भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने का उसकी भी तैयारी करनी चाहिए, तो हम सब इसके ऊपर भी रिसर्च करें कि हमारा श्रेष्ठ भाग्य और भविष्य कैसे बने और उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, और इसके लिए एक आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ वास्तविक में हाईएस्ट में बेस्ट है या इसके अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ताकि बाबा ने भी इस टाइम पर पिछले साल की मुरली में कहा था कि अभी तो समय ऐसा आ गया है कि उर्ती कला का ही पुरुषार्थ जो है उसके आधार पर आप समय पर लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तीन छह प्रकार की पुरुषार्थ की विधि बताई, एक चलने की, दौड़ने की और उड़ने की, कभी तो उड़ने की कला की बात है, उड़ने की कला के आधार पर हमें अपना पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाना है ताकि श्रेष्ठ पुरुषार्थ के आधार पर श्रेष्ठ हमारा प्रारब्ध बने, तो इसलिए श्रेष्ठ प्रारब्ध बने इसके लिए क्या करना चाहिए ये सब बातों का भी जरूरत है। हमारे आत्म प्रकाश भाई भी यहाँ बैठे हैं, वो भी हमारे युवा वर्ग के बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करने वाले हमारे भाई हैं, और भी बहने भाई यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार से हमारी इस मीटिंग के अंदर ऐसा कारोबार करें कि जिसके आधार पर हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनना और बनाना आसान रहे, पुरुषार्थ सहज हो जाए और पुरुषार्थ के अंदर आने वाली जो भी विघ्न है उस विघ्न को हम सरलता से क्रॉस कर सके, विघ्नों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उसके लिए उसकी थोड़ी आचार संहिता जो है उसका भी पालन करना पड़ेगा कि बाबा ने कई प्रकार की आचार संहिता लिखी हुई है। एक सिंपल बात बताओ, हमने परसों एक बार भाई को बताया आप वापस कब आएंगे, तो उसने कहा जब बाबा बुलाएंगे तब आऊंगा। मैंने कहा कि भाई साहब बाबा के बाबा बुलाता ही नहीं है, अपने को ही जंप लगाना पड़ता है, आपको आना पड़ेगा। नियम तो यही है, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बार, मतलब कई बार कहीं ऐसा कर देते कि जी भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे, इसका मतलब ये हो गया, बाबा जब बुलाएंगे तो आएंगे, अपने पुरुषार्थ के आधार पर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से एटीट्यूडल चेंज जो होना चाहिए कि हमें पुरुषार्थ करना है, हमारा भाग्य हमें बनाना है, हमारा भाग्य और कोई नहीं बना सकता है, हमारे भाग्य का हम भाग्य विधाता है। ये सारी बातों का मार्गदर्शन जो है मिलता रहे, और मैं समझता हूँ स्पार्क की इस मीटिंग के द्वारा ऐसे ऐसी बातें जो है जीवन लक्ष्य और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ का मार्गदर्शन मिले, इस प्रकार का मार्गदर्शन इस मीटिंग के अंदर सबको मिले। और हम सब जो कहते हम सहना भव तो सहनो भुनक द्वारा जो श्लोक जो है उसके आधार पर साथ में चले, साथ के अंदर साथ में चलते चलते श्रेष्ठ मंजिल जो है हमारी, उस मंजिल को तय कर करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा भविष्य की दुनिया में श्रेष्ठ प्रारब्ध हमको मिले, यही पुरुषार्थ है, यही सुख शुभेच्छा है और यही हम सबका लक्ष्य है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारा विश्व भी श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ भाग्य बने। तो इसलिए श्रेष्ठ भाग्य पुरुषार्थ करने में हम सबको सफलता मिले, यही मैं समझता हूँ आज के विषय इस समय के मीटिंग की जरूरत है, और प्राप्ति भी उस प्रकार से होगी। आप सब भी उसी प्रकार से स्टडी करेंगे। एक बात ये भी है, कई बार कई बहन भाई आते तो है मीटिंग में, परंतु आने के बाद घूमने के लिए कहते कि कहीं इसमें पहली बार भी आए हुए होंगे, पहली बार जो इस मीटिंग में आए हुए हाथ तो खड़ा करें। देखो अनुरूप भाई, विपिन भाई, कितने पहली बार आए हुए हैं, तो इसका ये भी एक जो है कि टर्नओवर बहुत होता है। अंबिका बहन हमारा टर्नओवर बहुत होता है, कि हम जो पिछले साल आए वो इस टाइम पर इतने नहीं आते, 100% में से 20% होंगे। कितने अभी आपने देखा नए कितने थे? 80% थे, 60% थे, 60% थे, अंबिका बहन के 60% नए हैं। तो इसके कारण क्या होता है, नया और पुराने का बैलेंस करना बिकॉज कठिन बात है। जो पहली बार आए हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे करके स्पार्क के ऑफिस में जाएंगे और भी हमारे कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ करके, पिछले सालों में क्योंकि 21वीं मीटिंग है तो पिछले 20 साल में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसका फल ऐसा है कि फिर आपस में नए और पुराने दोनों का मिलन जो है बहुत अच्छी चीज से हो सकेगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों का गैप हो जाता है, आप पहले वाले आगे होते हैं पिछले वाले पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो नए पुराने भाई बहन है उसके भी फर्ज है कि नए जो भाई बहन आए हुए हैं उनके भी पालना का कारोबार करना चाहिए, स्थापना का तो कारोबार करते हैं तो पालना का भी कारोबार सीखना पड़ेगा कि कैसे हम हमारे अन्य भाई बहनों का पालना कर करके उनको भी आगे बढ़ाने का मार्ग बतावे, आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करावे। तो इस प्रकार से जो नए भाई बहन आए हैं पहले तो उनका स्वागत भी है, और साथ साथ यह लक्ष्य उनका लक्ष्य होना चाहिए कि हम थोड़ी मेहनत ज्यादा कर करके आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें, और आगे बढ़ करके जो पुराने भाई बहन है उसके साथ समांतर करण रूप में हमारा पुरुषार्थ हो तो अच्छा होगा, तो वही सफलता होगी। इस प्रकार से बाकी बातें तो बहुत है, समय की भी बातें हैं, इसलिए 4 दिन का समय आप हम सब का सफल हो जाए इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के हम आज से ये मीटिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। आप सबका फिर से आप सब पधारे यहाँ, 4 दिन निकाल करके आएंगे रहेंगे, इसकी प्राप्ति भी बहुत अच्छी होगी। हमने सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि पूरा 4 दिन यहाँ रहे, ऐसा नहीं 4th दिन जो है दोपहर में चले जाए तो सुबह चले जाए, ऐसा नहीं, परंतु पूरा ही 4 दिन रहेंगे तो क्या होगा, प्राप्ति भी पूरी हो जाएगी। और अंतिम चरण में तो कई प्रकार की प्राप्ति की बात रिवाइज होता है, रिविजन करते हैं, नक्की करते हैं आगे क्या भविष्य क्या, वो सब नक्की कर सकेंगे। जैसे हमारी अगले सितंबर में हमारी कॉन्फ्रेंस होंगी, उसका भी लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसको भी कैसे सफल बनावे, ये सब बातें करना होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग का दिवस होता है, पिछले साल तो बहुत अच्छे जिससे हमारे दैवीय परिवार ने मनाया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ही यूनाइटेड नेशंस में ये बात रखी। इस वर्ष भी 21 जून को कैसे प्रोग्राम बनाए ताकि मेडिटेशन जो है उसका कारोबार आगे बढ़ता रहे, तो इस प्रकार से देखो क्या क्या हो सकता है। बाकी तो कोई किसी को कुछ खाने पीने रहने की कोई समस्या हो तो ऋषिकांत भाई हमारे अंबिका बहन से और हमारे जो साथी है उनसे बात करके कोई भी प्रकार की सॉल्यूशन चाहिए साधन का, यहाँ तो रहने का खाने पीने का किसी के पास परहेज होती है। आजकल तो बड़ा प्रॉब्लम तो डायबिटीज का होता है, तो डायबिटीज का प्रॉब्लम के कारण भी सफलता उसके ऊपर जीत पाने के लिए क्या करना चाहिए चार दिन के अंदर, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब चार दिन का आप चार दिन की आपकी यात्रा जो है वो सफल रहे, यही शुभेच्छा है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी को। तो इस कार्यक्रम की शोभा और भी आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़ों से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम को हम दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम से और भी उन्नत करें।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो, तुम बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
व्यापार की गतिविधियों के बारे में विशेष राजकुमार भाई जी ने अवलोकन किया था। कुछ दो बातें उनको विशेष भाई जी के सम्मुख हम सभी के बीच में रखनी है, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आकर हमारे पास हम सभी के साथ और भाई जी के साथ में उन दो विशेष बातों का अवलोकन करें।
ओम शांति। कल शाम को भाई जी के साथ डिस्कस करते हुए यही बात चल रही थी कि रिसर्च को किस तरह से बढ़ाते हैं और लैब में, तो उसमें एक स्लाइड दिखाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं कि जो इक्विपमेंट, जैसे कोलैबोरेशन करते हैं डीआरडीओ के साथ, इसरो के साथ, जो रिसर्च वो हम भाई बहनों के ऊपर करते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करते हैं, वही एक स्लाइड आपसे शेयर करना चाहते हैं। दो मिनट वो स्लाइड दिखाएंगे। और हम जो लैब बना रहे हैं अभी स्पार्क ऑफिस में, उसमें भी हम यही चाहते हैं कि आप, हम सब के सहयोग, आप सबके सहयोग से उसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हम अगर यूज करेंगे तो रिसर्च में काफी फायदा होगा। जो डीआरडीओ में यूज करते हैं वो एमआरआई मशीन हो जाता है, ईईजी की मशीन इक्विपमेंट हो जाते हैं, ईसीजी के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वही है, और जिससे रिजल्ट्स काफी अच्छे निकलते हैं, जिसका प्रमाण हम बाहर वालों को दे सकते हैं। जो टेस्ट किए जाते हैं साइकोलॉजिकल टू फिजियोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जैसे होते हैं क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर लेने के लिए, जस्ट टू फाइंड आउट हाउ द ब्रेन वर्क्स। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, पेपर बेस्ड टेस्ट, लाइक जैसे स्कूल में हम बैठ के एग्जाम देते थे या कॉलेज में एग्जाम देते हैं, उस तरह टेस्ट पेपर देते हैं जिसका आंसर लेने के लिए। एंड देन फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल टूल्स जो होते हैं, जो ईईजी मशीन होती है या ईसीजी होती है या फंक्शनल एमआरआई टेस्ट होते हैं। दिस इज द इमोटिव ईईजी जो इक्विपमेंट है, जो ब्रेन के सेल्स को एनालाइज करता है, और नॉर्मली ईईजी मशीन आपको वेव्स में बताता है कि ब्रेन के सेल्स किस तरह से काम करते हैं। इमोटिव ईईजी टेस्ट इमोशनल क्वेश्चन को भी उसको लेता है, और इमोटिव ईईजी लेके उसका रिकॉर्डिंग किस तरह से किया जाता है वो इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। और डिफरेंट मेथड्स जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं डीआरडीओ, इसरो, निमहांस, उन लोग जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका स्लाइड है जो दिखाता है, ईईजी कहो या ईसीजी किस तरह से लिया जाता है। रिजल्ट्स ये बताते हैं कि ब्लड प्रेशर रिडक्शन होता है, ब्लड प्रेशर रिडक्शन एंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी स्टेबलाइज होती है। दिस इज द इमोटिव ईईजी टेस्ट लिया जा रहा है भाई के ऊपर, और ये है एमआरआई मशीन विच इज नोन एज द फंक्शनल एमआरआई। तो यही टूल्स एंड टेक्निक्स है, यही इक्विपमेंट है जो हमारे कोलैबोरेटर्स यूज कर सकते हैं, करते हैं रिसर्च करने के लिए। हम जो लैब बना रहे हैं सहयोग से, हम भी इसमें से काफी कुछ इक्विपमेंट लाए, यही विचार था, और ये आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजकुमार भाई जी का। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच आज के शुभ दिन पर अपनी शुभकामनाओं को हम सभी के बीच रखेंगे। आदरणीय हमारी दीदी जो इस स्पार्क विंग की कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर अंबिका बहन जी, पिछले 43 इयर्स से आप टोटली डेडिकेटेड है बाबा के इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए, अपनी ईश्वरीय सेवाओं में उपस्थित है। विवीपुरम बैंगलोर जहां की 300 सेवा केंद्र की आप स्वयं बहुत ही अच्छी तरह से कार्य को संभालते हुए बागडोर संचालिका बन कार्य दे रहे हैं। दादी तो हम सभी के बीच में जानकी दादी ये चाहते हैं कि कोई न कोई विशेष ऐसे कार्यकर्ता ही रहे जो सेवा केंद्र पर रहते हुए भी अपनी इस भूमिका को आगे बढ़ाते रहे। और टिक्कन दादी जो कि हृदय पुष्पा दादी जी जिनकी बहुत पालना में आप पले हैं, और ऐसे आदरणीय दीदी जी का हम चाहते हैं कि हमें सदा ही मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आज भी विशेष हम सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं, इस मीटिंग की भी विशेष शुभकामनाएं देंगे। तो आदरणीय अंबिका बहन जी से निवेदन करती हूं कि वे भी हम सभी को अपने विचार दें। ओम शांति।
परम आदरणीय दाता रमेश जी और हमारे सब आदरणीय बड़े भाई मंच पर सब भाई बहने, हमारे विशेष गाइडेंस देने लिए बाबा ने जो हमारे परम आदरणीय ब्रदर रमेश जी को रखा है, मैं सदैव फील करती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भी बाबा उनको याद किया, आप सबको याद है कि जो भी चित्र बने अच्छे अच्छे विचार करते हैं उन बच्चों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो भ्राता जी की आप सबको ज्ञात है कि जो भी प्रदर्शनी के चित्र बने वो भ्राता जी का ही ईश्वरीय सेवाओं में देन है। तो क्लैप तो बजाइए हम सब दिल से स्पार्कलर्स को। ये शान है कि हमारे भ्राता जी इतने बड़े बड़े विचार और इतने सारे सेवाओं की बेहद सेवा में उनकी योगदान है। उतना ही नहीं, अभी तीन विंग्स जो है उसमें स्पार्क विंग की जो सदैव कल्चरल विंग और जूरिस्ट विंग के साथ भ्राता जी सदा शुभ भावना ये रखते हैं कि स्पार्क एक सिर्फ चिंगारी ही न रहे, सदैव ये फ्लेम से फायर बन करके सारे विश्व को लाइट देने का कार्य करें। तो उनकी जो शुभ संकल्प है, जो उनकी भावनाएं हैं, उनका जो असर है हम सब आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रेरित कर रहा है। और ये जो सेवाएं छोटे रूप से शुरू होकर के अभी इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इतने बड़े विज्ञानियों के साथ मिलकर के जो सेवा करने की प्रेरणाएं दे रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि 72 में बाबा ने जो कहा था, अंत में मेरी प्रत्यक्षता करने लिए बड़े बड़े विज्ञानी अपने मिशन्स लेके आएंगे और आपके ऊपर रख करके वो सिद्ध करेंगे कि इनकी जो संबंध है वो भगवान से है, और वो मेजर करके दुनिया के आगे रखेंगे। वो सारा जो श्रेय है प्राता जी का, जो विचार और उनकी जो उद्देश्य और विजन है वो सारा बाबा उन द्वारा कार्य कर रहा है। इतना ही सिर्फ तीन विंग्स की बात नहीं, भाई साहब की जो बड़ा विजन है कि सारे विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से उनकी जो विचारधाराएं है, आज भी नवीनता से पैसा वो रख रहे थे कि ये जो भी कानून की बातें भी है उनके ऊपर भी आप रिसर्च करें कुछ और बातें स्पष्ट करें दैवी परिवार के आगे। ऐसे भ्राता जी को बाबा विशेष प्रेरणाएं देते रहते, टचिंग्स आते रहते हैं जो ईश्वरीय सेवाओं को विहंग मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करता है और वो करा रहा है। तो इसलिए मैं सौभाग्य समझती हूँ और हम सब मिल करके भाई साहब की और साथ साथ बाबा की और दादियों की जो आशाएं है, प्रेरणाएं है बाबा को प्रत्यक्ष करने की बातें, सिर्फ स्थूल से ही नहीं हमारे जीवन से, चेहरे चलन से, तो वो हम सब स्पार्कलर्स जिस बात के लिए हम हर बरस बैठते हैं और इस बरस भी कुछ प्रोजेक्ट्स लेके हम बैठ रहे हैं। तो ब्राता जी की ये जो प्रेरणाएं थे पुराने, ऐसे नहीं आधा में प्रोजेक्ट छोड़ दे, लेकिन वो कंटिन्यू भी रहे, साथ साथ नयों को भी पालना करते हुए वो साथ साथ उनको बढ़ाए भी, ये बात हम सब मिलकर के करें। और स्पार्क को फ्लेम नहीं लेकिन एक फायर के रूप में इन अनुभवों के आधार से, उस अथॉरिटी से हम विश्व के आगे परमात्म पालना, परमात्म शक्तियां और परमात्म प्राप्तियां क्या होती है जीवन में, उनसे हमारा जीवन कितना ऊंच बन जाते हैं, ये बातें हम सारे विश्व के आगे रखें। इतने कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी अंबिका जी का। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच पधारे आत्म प्रकाश भाई जी, आप MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप 46 सालों से यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी ईश्वरीय सेवाएं पांडव भवन में दे ही रहे हैं। मैं आपकी अधिक विशेषताएं क्या कहूं, बाप दादा के तो आप है ही नूरे रतन। जब कहा ही है कि योग अभ्यास में आप प्रवीण हैं, देश विदेश की सेवाओं में आप यही कार्य करने के लिए खास जाते, अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं, तो हम उन्हीं से सुनते हैं आज के इस दिन के ऊपर उनके उद्गार क्या है। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई,
परम आदरणीय, परम श्रद्धेय रमेश भाई साहब जी, आदरणीय अंबिका दीदी जी तथा मराठी जी विपिन भाई जी और अलका दीदी जी और सभा में उपस्थित मेरे सभी साथियों, हम बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहन जी ने मेरे लिए आपसे तालियां बजाई, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ। हमारे जो वरिष्ठ भ्राता जी हैं रमेश भाई जी, जिसके लिए हम सुन रहे थे, यज्ञ की जो सेवा की शुरुआत जो हुई है, ये जो चित्र है, वो चित्र जो मेन है, वो चित्र भाई साहब जी से बाबा ने बनवाए हैं और उसी से सेवा शुरू हुई है। इसलिए आप ऐसी जोरदार तालियां बजाएंगे, और जोरदार बजाएंगे, थोड़ा और जोरदार बजाएंगे, और जोरदार बजाएंगे जरा। ताकि परम धाम से भी बाबा का ध्यान इस सुंदर फुलवाड़ी पर आ जाए। जब भी सेवा का समाचार हमारे वरिष्ठ भाई बहने बाबा को देते हैं, तो बाप दादा कहते हैं कुछ नया करो, अभी कुछ नया करो। अब नया क्या करे, नया कैसे करे, उस नयापन के लिए जो आविष्कार करना होता है, उसके लिए बाबा ने ये स्पार्क विंग का निर्माण किया है। कुछ दिन पहले बाबा मुरली में वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट की बहुत महिमा कर रहे थे कि साइंटिस्ट को बहुत थैंक्स दे रहे थे, तो दुनिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दुनियावी साधन आविष्कार करके सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण संसार में जो नए आविष्कार करने हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और सेवा को भी आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे जो है यहाँ उपस्थित है, और आप भी सभी जूनियर साइंटिस्ट जो है सहयोगी साइंटिस्ट इस सभा में हैं, इसलिए आपको बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने दी है दैवी परिवार को, ब्राह्मण परिवार को कुछ न कुछ नया देने के लिए। क्योंकि जो निमित्त होता है उसके द्वारा बाबा प्रेरणा देकर वो काम कराते हैं। वो तो निराकार है, काम तो जरूर किससे तो कराएंगे ना, जैसे भाई जी के द्वारा प्रदर्शनी बनाने की सेवा कराई, कराई तो बाबा ने, प्रेरणा दी बाबा ने। तो ऐसे आप सभी चार दिन में ऐसे सुंदर आविष्कार करेंगे, ऐसी सुंदर प्रेरणाएं इन्वेंशन करेंगे और अपने ब्राह्मण परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, यही मेरी शुभ आशा है और यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच हमारे ही इस पार्क के आदरणीय बहुत ही पुराने अनुरूप भाई जी मराठे, आप पिछले 38 इयर्स से इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं, देश विदेश की सेवाएं भी आपने देखी है और की भी है, लेकिन स्पार्क के लिए जैसे दादी जानकी जी ने आपके अंदर बहुत ही हिम्मत उल्लास देखा और आज आप उन्हीं को लेकर के पुणे में बहुत अच्छी तरह से अपने कार्यों को सभी आत्माओं को लाभान्वित करते, तो हम उनके भी आज के इस मीटिंग के दौरान उनके शुभ विचार क्या है वो सुनते हैं। अनुरूप भाई जी,
ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय भ्राता रमेश जी, आदरणीय अंबिका बहन जी, आंतन प्रकाश भाई, सभा में उपस्थित सभी स्पार्कलर्स, आज इस मीटिंग में उपस्थित होकर आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करने का जो मुझे चांस मिला है, मैं बहुत ही खुशी का अनुभव करता हूं। मैं समझता हूं स्पार्क के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी तो है ही, एक चैलेंज है। जो राजकुमार भाई जी ने बताए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनके द्वारा हमारे ब्रेन के ऊपर टेस्ट हो सकता है, आखिर ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए किसने? इंस्ट्रूमेंट तो बनाया है ह्यूमन माइंड ने, तो हमारा अपना मन, अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर और परमात्म शक्ति के आधार पर हम ऐसे ऊंच स्टेज पर ले जाए जो इन इंस्ट्रूमेंट से हम अच्छी तरह से अपना काम निकाल सके। कई बार ये होता है कि हम कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बाद में पता लगता है कि ये नियम के मुताबिक नहीं था, उस समय कैसे बिहेव किया जाए। अगर इंस्ट्रूमेंट बताए कि आपकी लेवल ये है, तो हमारे अंदर भी वो मेजर करने की ताकत है, वो बुद्धि है, हम भी पहचान सकते हैं, तो हम अपने आप ऐसे कुछ तरीके निकाले जो हम अपनी अलग अलग स्टेज को पहचान सके, उसको क्वांटिफाई कर सके, उसकी क्वालिटी को भी पहचान सके। मुझे आज सबके सामने बताते हुए खुशी होती है कि कुछ ऐसे प्रयत्न हमने किए हैं, कुछ मीटर बनाए हैं, उदाहरण के लिए खुशी मीटर, शक्ति मीटर, टेंशन मीटर, क्रोध मीटर। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो मीटर जो मनुष्यों ने बनाए हुए है वो बताने से पहले हम अपने आप को भी सर्टिफाई कर सके कि हमारा क्रोध, हमारी खुशी इस लेवल पर है और इतने समय में हम ये लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अंदर के क्रोध को, तनाव को कम करना चाहते हैं। तो ये सारे प्रयोग जो आपके सामने भी आने वाले हैं, मैं समझता हूँ खास करके जो नए स्पार्कलर्स आए हैं उसका लाभ उठाएंगे और इसमें योगदान देंगे। दूसरा, जो मेजर करते समय तकलीफ होती है, हमें कई बार पता नहीं होता, और भ्राता जी तो बहुत अच्छी तरह से बताया कि इग्नोरेंस ऑफ रूल और रेगुलेशन इज नो एक्सक्यूज, ना डिवाइन फैमिली में है ना बाहर की दुनिया में है। अभी अभी एक न्यूज आई थी, आपने पढ़ी सुनी होगी, एक इंटरनेशनल प्लेयर, टेनिस प्लेयर, उसने कुछ ड्रग लिया था, अनजाने लिया, उसको पता नहीं था, बाद में पता लगा और उसने खुले आम से, बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से माफी मांगी। मैं समझता हूँ ये जो है इसकी क्वालिटी, हम भी सभी ब्राह्मण इसको जरूर सीखे और इसके कारण हम अपने ही बिहेवियर को और अच्छी तरह से एलिवेटेड स्टेज पर ला सके। तो इतना ही मैं कहकर आपसे विदाई लेता हूँ कि हम इस मार्ग में बड़े गंभीरता से साथ साथ लाइट होकर टेंशन फ्री होकर अपना कार्य करें और जो भ्राता जी का जो विजन है, दादियों का विजन है, जो एक्सपेक्टेशन है इस पार्क की ओर से, उसको हम अच्छी तरह से पूरा कर सके। ओम शांति, धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता अनुरूप जी का। अभी मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर बिपिन कॉन्ट्रैक्टर जी, आप स्पार्क से भी काफी समय से जुड़े हुए हैं, भाई जी के साथ विशेष इस बात में विचार विमर्श आप करते ही रहते, खास एडिटर होकर आप इसकी कई गतिविधियों को लिख चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं और पिछले 35 सालों से आप ज्ञान में चल रहे हैं। आपके अनुभव अपनी रीति के, अपने लेवल के हैं, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि आपके इन अनुभवों से हम भी लाभान्वित हो। तो डॉक्टर विपिन कॉन्ट्रैक्टर जी, आप सभी के आगे अपने विचार रखें।
ओम शांति। हम सभी के प्राण प्यारे बाप दादा, हमारी सम्माननीय दादी जी, स्पार्क के आद्य स्थापक एवं चेयरपर्सन आदरणीय रमेश भाई जी, स्पार्क विंग का सफल संचालन करने वाली स्पार्क विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय अंबिका बेन जी, स्पार्क में शुरू से अपनी भूमिका दर्ज करने वाले राजयोग के प्रयोगी आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी, अन्य मंचासीन महानुभाव एवं प्रेक्षागार में बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी स्पार्कलर्स, 20 साल की मजल पार करके स्पार्क आज 21 साल में प्रविष्ट हुआ है और हम सब ये 21वीं मीटिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं इस मीटिंग की सफलता के लिए शुभ भावना और शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ। इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम दूर दूर से यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इस मीटिंग में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो भी हम प्रोजेक्ट ले उस पर साल भर अपने लोकल लेवल पर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में काम करेंगे और नेक्स्ट ईयर 22वीं मीटिंग में उसके रिजल्ट्स हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे, ऐसी शुभ भावना करता हूँ। फरवरी 1995 में जब स्पार्क की स्थापना हुई, तब से मैं स्पार्क के विकास का साक्षी रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स स्पार्क के तहत हुए हैं। यज्ञ के भाई बहन भी स्पार्क से बहुत अपेक्षा रखते हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि उन सबकी अपेक्षा हम पूरी करें। हर मीटिंग में नए नए भाई बहन बहुत आते हैं। आज भी रमेश भाई जी ने हाथ उठवाया तो हमने देखा कि आज भी नए नए भाई बहन करीब 60% आए हुए हैं। तो मैं अनुभव से ये बात बताना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। हमारी स्व उन्नति के लिए स्पार्क में नए नए आविष्कार करने के लिए और सेवा करने के लिए ये कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। तो आप सभी उस पर गौर करेंगे और जो भी आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप कंटिन्यूटी बना के चले, ऐसी में शुभकामना रखता हूं। मीटिंग तो साल में एक बार होती है, स्पार्क लोकल चैप्टर्स के आधार से काम करता है। तो लोकल चैप्टर में लोकली हम बार बार इकट्ठे हुए, बार बार मीटिंग करें और जो प्रोजेक्ट लिया है और या नए प्रोजेक्ट ले उसके ऊपर काम करें, तभी हम खूब ज्यादा प्रगति कर सकते हैं और इसका लाभ सारे यज्ञ को मिल सकता है। फिर से मैं इस मीटिंग में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं और इस 21वीं मीटिंग को सफल बनाने के लिए शुभ भावना और शुभकामना पेश करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर बिपिन कॉन्ट्रैक्टर जी का। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आदरणीय रूपेश भाई जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं राजयोगा बजट एप्लीकेशन के निमित्त। तो सबसे पहले कर्म योग स्थिति हमारी कैसे हो, उस अनुसंधान में हम सभी के आगे अपने विचार विमर्श रखेंगे रूपेश भाई जी। रूपेश भाई जी को आप सभी जानते भी होंगे, हम सभी समाधान कार्यक्रम को देखते भी हैं, सभी देखते हैं ना, पीस ऑफ माइंड पर जहां मुलाकात का सत्र चलता है और आप बहुत अच्छे एंकरिंग कर रहे हैं उस बीच, इसलिए ऐसे विशेष आत्मा के द्वारा भी हम अभी ये सुनेंगे कि कर्म योगी स्थिति किस प्रकार से हम अपनी बनाए रखें। आप पिछले 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और 23 साल से यज्ञ में समर्पित है। विशेष सूरज भाई के साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं में आप अपना योगदान दे रहे हैं ज्ञान सरोवर में। तो रूपेश भाई जी से अनुरोध करती हूं कि वे आकर अपनी इन गतिविधियों के बारे में हमें समझाएं।
ओम शांति। हमारा विषय योग ही है और शुरुआत योग से हुई। परम आदरणीय रमेश भाई जी, सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित आप सभी स्पार्कलर्स, विशेष करके पिछले वर्ष हमने जो प्रोजेक्ट लिया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वर्ष भी, क्योंकि उससे हमें बहुत ही सुंदर रिजल्ट प्राप्त हुए थे। आप जानते हैं बाबा की हमेशा ही आशा रहती है हम बच्चों से कि हम बच्चे अपने चलन और चेहरे से बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाबा का एक महावाक्य है जिसको हम लोग थीम बना रहे हैं इस वर्ष अपने प्रोजेक्ट का। बाबा ने कहा है कि जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही योग के बिना तुम्हारे कर्म का कोई महत्व नहीं है। अर्थात जब तुम योग युक्त होकर कर्म करते हो तभी तुम्हारे कर्म यादगार बनते हैं। तो इस वर्ष हमने पिछले साल के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए, पिछले साल भी हमने योग और योग का प्रयोग विषय लिया था, इस बार कर्म योग और योग का प्रयोग दोनों ही विषय ले रहे हैं। विशेष करके प्रेरणा ये है इसके पीछे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सभी ब्राह्मण ये चाहते हैं, समय अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, समय की पुकार है, बाप दादा की भी पुकार है हम सब बच्चों से, और साथ ही साथ सेवाएं बहुत वृद्धि को प्राप्त होती जा रही हैं, तो कईयों की कंप्लेन रहती है कि हम योग के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। तो क्यों ना हम अपने कर्म में ही, अपनी दिनचर्या में ही योग को शामिल कर लें सुबह से लेकर रात तक। तो इस वर्ष हम लोग इसी पे विशेष करके विचार करेंगे और इसके लिए पूरी प्लान बनाई गई है कि हम अप्रैल से जनवरी तक कैसे हर मंथ एक थीम लेकर के कार्य करेंगे। वीकली चार्ट बनाया गया है, साथ ही मंथली चार्ट आप लोगों को भेजा जाएगा, वीकली एफर्ट भेजे जाएंगे, और साथ ही जो आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं या साथ ही आप मेल आईडी आपके पास है तो उनके द्वारा आप लोगों तक ये अच्छी बातें पहुंचाई जाती रहेंगे। खास करके प्रयोग की जो विषय है उसके लिए भी हर मास थीम रखा गया है कि हम लोग अलग अलग जो योग के प्रयोग हैं वो करें। हर मास के लिए थीम, जैसे कभी बीमारियों के ऊपर, कभी मेंटल इलनेस के ऊपर, कभी आपको और कोई पारिवारिक समस्या है या अन्य किसी भी प्रकार के आपके आसपास समस्या है, उनके लिए भी योग का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इस बार ये विशेष विचार है कि पिछली बार हम लोगों को जो अच्छे अनुभव प्राप्त हुए, केवल एक अनुभव आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे स्पार्कलर्स में से ही किसी ने ये अपना मैसेज भेजा था, अपना अनुभव भेजा था कि हमें डॉक्टर की तरफ से, हमारे किसी संबंधी के यहाँ एक कोई पेशेंट थे, हॉस्पिटलाइज थे, और डॉक्टर की तरफ से ये बोल दिया गया कि एक घंटे के बाद आप इसे ले जा सकते हैं, हम इसे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि पूरे शरीर में ही पॉइजन फैलने लगा था, उसकी किडनी लीवर सब फेल होने की कंडीशन में आने लगे थे। अब ये सारे वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि श्वास तो चल रही है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है उसको रखा जाए अभी और हम कुछ अपनी तरफ से योग करते हैं। अच्छा योग उनके लिए किया गया और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखा गया। जैसे जैसे उनके लिए योग किया गया, एक इम्प्रूवमेंट देखा गया उनके शरीर में, उनके बाकी के ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करने लगे, तो डॉक्टर को भी लगा कि नहीं अभी इनका जो सिस्टम है वो हटाया ना जाए, रखा जाए। दूसरे दिन, तीसरे दिन तक योग जारी रखा गया उनके लिए। तीन दिन में उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल सी होने लगी। साथ ही पानी आदि जो चार्ज करने की बात है वो भी पानी चार्ज करके उनको देने के लिए कहा गया। वैसे हम हमेशा, आप जानते हैं कि पानी चार्ज करना बाबा के समय से भी ये चीज रही है, दादी जी को भी बाबा कहा करते थे कि ले। तो विशेष करके जब ये दिया गया, डॉक्टर से ये पूछा गया कि क्या हम इनके मुख में पानी डाल सकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पानी की एक ड्रॉप भी इसके अंदर यदि जाएगी तो इसके प्राण जा सकते हैं। लेकिन अब और भी तो कोई ऑप्शन नहीं था, वैसे भी डॉक्टर ने कह दिया था कि इनको जाना है, तो इन्होंने डॉक्टर से भी नजर चुरा के उनके मुख में वो जो चार्ज किया हुआ पानी है वो डाला। दो घंटे, दो दो घंटे के अंतराल में डालते रहे। आपको आश्चर्य होगा कि जो कॉमा में चली गई थी पेशेंट, एक घंटे के बाद जिनके मरने की घोषणा कर दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, तीन दिन के बाद वो कॉमा से बाहर आ गए और योग उनके लिए 21 डेज का कंटिन्यू रखा गया। और ये एक विजन रखा गया योग के साथ साथ कि 22nd डे पे ये बिल्कुल ठीक होकर के ऑटो में बैठ करके खुद अपने घर जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ठीक 22nd डे पे वो पेशेंट ऑटो में ही बैठ करके अपने घर वापस गया। तो ये एक योग का प्रयोग है। जब हम इसे कहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कैसा चमत्कार है, लेकिन सचमुच ये हो रहा है। तो स्पार्क की तरफ से इस वर्ष विशेष ये विचार है कि जो ऐसे सुंदर अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं, योग तो हम सब कर ही रहे हैं, कर्म योग से कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ना इस प्रोजेक्ट का एक लक्ष्य है हमारा, जो स्व के लिए है, और दूसरा इन अलौकिक चमत्कार से साक्षात्कार की ओर बढ़ना ये भी एक विशेष ध्येय है, क्योंकि एक अलौकिक चमत्कार हो रहे हैं। और व्यक्तिगत मेरी ये फीलिंग है, जैसे बाबा ने कहा है कि अंत में साक्षात्कार की धूम मचेगी और सारा संसार बाबा के पास आएगा कि यही है, यही है, यही है, लेकिन उससे पहले व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्ट ये चल रहा है या चलने वाला है, अलौकिक चमत्कार, कि बाबा के सेंटर पे आओ, ब्रह्मा कुमारी के पास आओ, इन अलौकिक फरिश्तों और कर्म योगियों के पास आओ, तो आपका मन शांत हो जाएगा, तन शीतल हो जाएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी तकलीफें बीमारियां जो भी हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपको परमात्मा मिलन हो जाएगा। ये जो एक चमत्कारी कार्य है वो ऐसा प्रतीत होता है कि अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम विशेष करके जो वैज्ञानिक पैमाने हैं, साइंटिफिकली हम कैसे इसे एनालाइज करें, ये हो रहा है। और आज रात को भी मैं प्रेजेंटेशन आपको दूंगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने एरियाज में किए हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मेडिसिन ने नहीं लेकिन मेडिटेशन ने आपकी रक्षा की है। ये डॉक्टर्स अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर है कि कैसे हम इसे साइंटिफिकली एनालाइज, हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ये एक विशेष करके ध्येय है। तो खास करके आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं इस कर्म योगी स्थिति और योग के प्रयोग के लिए, कि सुंदर प्रोजेक्ट में हम सब शामिल होकर के बाबा की जो आशाएं हैं उसे भी पूर्ण करें और साथ ही साथ संसार में जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उसमें भी हम सबको मदद करें। ओम शांति।
ओम शांति। रूपेश भाई ने योग के प्रयोग की बातें बताई, मैं आपको एक समाचार सुनाता हूँ। ज्ञान का भी प्रयोग होता है, आप सबको मालूम होगा आजकल अखबारों में कंट्रोवर्सी चल रही है कि जैसे सबरीमला है, हमारे पुणे के नजदीक शनि भगवान का मंदिर है, हमारे घर के नजदीक में हाजी अली है मस्जिद है, वहां पर दूसरे जगह पर बहनों को अंदर प्रवेश वर्जित किया गया है, आपको मालूम होगा। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में आई थी अपील, तो उसके अंदर सबरीमला के तरफ से वकील ने बहुत बताया कि बहनों को दाखिल करने से ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, ऐसे और कई बातें मतलब उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर बताई। जब वो बता रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज जो था, दो जज जो उसको खंडपीठ कहते हैं, बेंच कहते हैं, तो बेंच में से एक जज ने कहा कि ऐसा कैसे आप कहते हो कि बहनों के द्वारा काम कर होगा तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है पिछले 70-80 साल से काम कर रही है, संस्था मुख्य बहनों के द्वारा ही चलती है, देश विदेश में उसके द्वारा कारोबार चलता है और उसके द्वारा जो कारोबार चलता है उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है, किसी भाई को भी प्रॉब्लम नहीं है कि बहनों के द्वारा क्यों चलती है ऐसी संस्था। तो जब बहनों के द्वारा भी ऐसी अच्छी आध्यात्मिक संस्था चल सकती है तो फिर मंदिरों में प्रवेश करने के बारे में आप क्यों उसके बारे में उसका विरोध में बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जज ने भी हमारे कारोबार के बारे में, क्योंकि उसने वो हमारे फंक्शन में नहीं आए थे परंतु टेलीविजन के अंदर जो हमारे जो प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रोग्राम उसने देखा हुआ था। आप जानते हैं ब्रह्मा कुमारी आदि आदि पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमारे ज्ञान के प्रयोग जो है उसकी इफेक्ट जो है कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे जाती है हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज वकील ने हमको बताया कि आज आपकी संस्था को ब्रह्मा कुमारी में याद किया गया था, ऐसे ही पिछले हफ्ते में गुजराती में एक अखबार आता है उसमें नवलकथा आती है, नॉवल आती है, उसके अंदर डेढ़ पेज नॉवेल का टाइटल था कैदी नंबर 109। उसके अंदर बताया गया था कि कोई गुनाह करता है तो उसको जेल में डालना चाहिए। लेखक ने आर्ग्यूमेंट किया कि जेल में जाने से तो कैदी और बिगड़ता जाता है, इसके बदले में उनको ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में भेजना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाने से क्या होता है कि उनके जो बातें जो है वो ज्ञान सुनते हैं उस प्रकार से करते हैं, आत्मिक बल आदि मिल जाएगा। डेढ़ कॉलम भर करके लेखक ने ब्रह्मा कुमारी इसमें कैदियों को भेजना चाहिए ऐसी बातें कही थी, लिखी थी। तो इस प्रकार से बात से बहुत होती है। एक दूसरी हमारे रूपेश भाई ने अनाउंसमेंट नहीं किया, आप सब जानते हैं हमारे नए नए तीर्थ स्थान बनते रहते हैं। बाबा ने तो पांडव भवन के चार तीर्थ स्थान की बात कही, आबू में ज्ञान सरोवर के सामने जानकी पार्क करके बन रहा है, आप जब जाओ ऊपर तो, क्योंकि नए लोग बहुत है इसके, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जाओ तो जानकी पार्क भी ऊपर बन रहा है। इधर अपना गॉडलीवुड स्टूडियो भी जो है वो भी बना हुआ है, बहुत उसके द्वारा भी कारोबार होता है। शिवरात्रि के कारोबार के अंदर सब जगह से जो प्रोग्राम होता है उसके क्लिपिंग जो है 1000 से भी ज्यादा क्लिपिंग उनके पास आई है। इतने सब हमारे जो प्रोग्राम हुआ है, हमारा ये न्यूज जो है सबको दिखाया जाए, अनेक अनेक भाषाओं के अंदर उसके द्वारा कारोबार होता है। अभी एक ओम संधि चैनल जो है दूसरी, उसके साथ में कारोबार होता है। तो अमेरिका में और कनाडा के अंदर रोज के हमारे 4 घंटे का प्रोग्राम आएगा, अमेरिका भारत के लोग जो वहां रहते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार से जो नई नई बातें जो है उसके साथ आप जो आते हो यहाँ, तो जो नई बातें होती है उसके साथ आप तालमेल रखेंगे तो मालूम पड़ेगा। हमारे भाई बहन ने सबने बताया प्रदर्शनी के चित्रों के बारे में, तो 63 की 64 की बात है। अभी ज्ञान सरोवर के अंदर यहाँ तो हमारे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडियो के द्वारा क्या सेवाएं हो रही है, इस प्रकार की वर्तमान की सेवाओं का जो क्या कारोबार हो रहा है उसको सबको मालूम रहे, तो वर्तमान के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। भूतकाल की बातें अच्छी थी मैं ना नहीं कहता हूँ, और उसके आधार पर तो उसके फाउंडेशन के ऊपर तो हम आज तक अभी तक यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो भी उसको आगे लेके जाने के लिए हम सबको कार्यभार उठाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए वर्तमान के साथ हम कदम से कदम मिला करके चले तो ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन सकता है। तो इस प्रकार से बहुत से बातें हो रही है, समाचार इतने आते रहते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। ये तो मेरे को हमारा एक मित्र जो है सुप्रीम कोर्ट में काम करता है वकील के रूप में, उसने बताया कि आज आपकी संस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज ने महिमा किया और सबरी मलाई वालों के जो वकील था उसकी बात को काट दिया। जज हमारी बात को प्रस्तुत करे कितनी अच्छी बात है कि बहनों के द्वारा संस्था चलती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न सरकार के लेवल पर न पब्लिक के लेवल पर किसी को भी कोई ब्रह्मा कुमारी के विरोध में फरियाद नहीं है। तो आप लोग सबरी मलाई आदि के अंदर बहनों को जाने के लिए क्यों मनाई कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। हमारे कारण शायद ये जजमेंट भी आ जाएगा तो सबरी मलाई आदि में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए बहनों को एक छुट्टी मिल गई, तो मैं समझता हूँ उसमें ब्रह्मा कुमारी का कारोबार बहुत बहुत मददगार रहेगा। ओम शांति।
अब मैं शिल्पा बहन जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी आकर अपने सब्जेक्ट के बारे में हम सभी को बताएं। गोइंग बियॉन्ड द कॉन्शियसनेस आई एंड मी, इस पर आप प्रकाश देंगे कि किस तरह से हम अपने इन विचारों को, इस प्रोजेक्ट को अपने आप में अधिक रूप से धारणा रूप बनाएं। तो शिल्पा बहन जी जो पिछले 28 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और 12 साल से आप समर्पित हैं बेंगलोर में, और विशेष आदरणीय अंबिका दीदी जी के साथ पालना में पल रहे हैं, तो ऐसे शिल्पा बहन जी से हम अनुरोध करते कि वे हमें अपने विचार बताएं।
ओम शांति। जैसे टॉपिक बताया गया है, गोइंग बियॉन्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ आई एंड माइंड थ्रू इंटेंस प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, माना गहरी आत्म अभिमानी के अभ्यास से मैं और मेरेपन के भान से परे जाना, ये प्रोजेक्ट है। इसकी मेन गाइड होंगे अंबिका दीदी, तो दीदी का क्लास होगा जैसे यूजुअली, तो दीदी इस टॉपिक के बारे में क्लास कराएंगे। बाकी इस बार जो लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट चला था तो उसमें 4 सब्जेक्ट में कम से कम 5 मार्क लेना, कॉल ऑफ द टाइम जो प्रोजेक्ट चला उसमें बहुत क्रिएटिविटी लाया गया, जिससे कि हर बार ये होता है कुछ नयापन करे, और वही पूरा साल एक ही पॉइंट के ऊपर अभ्यास करने से अच्छा कुछ ना कुछ उसी सब्जेक्ट में नयापन लाए। बट इस बार हम सोच रहे हैं कि एक ही पॉइंट को लेकर, जैसे आत्मा अभिमानी की अभ्यास, उसकी इतनी गहरी अभ्यास करें ताकि वो हमारे संस्कार में वो परिवर्तन आए, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस। जैसे अनुरूप भाई जी बता रहे थे कुछ पैरामीटर्स बनाएं, ऐसे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स इस बार बनाना चाहते हैं जिससे हम वो चेक करें कि कितनी हद तक हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस आया है या इस अभ्यास से क्या क्या चेंजेस होता है और साइंटिफिकली भी इसका मेजरमेंट हो सके। तो इस बार विशेष इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। बाकी और जो पैरेलल सेशंस होंगे उसमें इसमें और गहराई से डिस्कशन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा बहन जी का। अब मैं राकेश भाई जी जो पुणे से हम सभी के बीच में पधारे हैं, तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में वो हमें जानकारी देंगे। राकेश भाई जी जो पिछले 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और स्पार्क से उसकी गतिविधियों के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, पुणे में विशेष अनुरूप भाई जी के अधिकक्ष में रहते हुए बहुत अच्छी तरह से अब उनके पालना में पलते इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बहुत आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आकर अपने विचार हम सभी के बीच में रखें। राकेश भाई जी,
ओम शांति। वैसे पिछले साल भी एक प्रोजेक्ट स्पार्क विंग की ओर से पुणे और मुंबई लोकल चैप्टर्स के लिए दिया गया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था सर्वोच्च स्थिति। तो उसका भी हम बाद में, उसका प्रेजेंटेशन भी आज शाम को है कि सर्वोच्च स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे सामने दो रोल मॉडल्स है, बाबा और मम्मा, कि जो जिन्होंने अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो उन्हीं को सामने रखते हुए उनके जो भी अनुभव है तो उनको हमने उसमें यूज किया हुआ है। और इस साल जो भी नया जो प्रोजेक्ट मिला है पुणे और मुंबई लोकल चैप्टर्स के लिए, और विशेष जो भी इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित होना चाहेंगे, तो उसका भी डिटेल रूप में फिर उसका प्रेजेंटेशन भी होगा, उसका डिस्कशन भी होगा, और आप सभी को भी उसका उसमें सम्मिलित होने के लिए भी आपको सबको चांस मिलेगा और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भी आपको चांस मिलेगा। तो तीसरा जो प्रोजेक्ट है, एक्सपीरियंसिंग ऑब्स्टेकल फ्री स्टेज फॉर वंस स्पिरिचुअल वेल बींग। तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है, आध्यात्मिक जो हमारी वेल बींग जो है, उसको प्राप्त करने के लिए कैसे हम ऑब्स्टेकल फ्री स्टेज को अनुभव करें, मना विघ्न विनाशक बने, तो उस स्टेज को हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके जो गाइड है अलका दीदी जी, जो आप लोकल चैप्टर्स कोऑर्डिनेटर मुंबई से है, और अनुरूप भाई जी जो जोनल कोऑर्डिनेटर है महाराष्ट्र विंग के, तो आप दोनों हमारे गाइड है जो हमें, जब हमारा ये पैरेलल डिस्कशन होगा इसमें, इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप दोनों भी विशेष रूप से इसमें गाइड करेंगे कि हम निर्विघ्न कैसे बन सकते हैं और निर्विघ्न बनने से कैसे निर्विघ्न सेवा भी होती है, तो उस पर हम आगे भी विचार करेंगे। और उसको कोऑर्डिनेटर्स के रूप में अलग अलग लोकल चैप्टर्स में कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है, राकेश भाई पुणे से, नीलिमा बहन विक्रोली मुंबई से, और रामाराव भाई स्पार्क विंग मुंबई से। तो विशेष इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम बाबा के बनते हैं तो माया हमेशा अपोजिशन करती है और कोई ना कोई प्रकार से विघ्न जरूर हमारे जीवन में आते हैं। तो एक होते हैं स्वयं के विघ्न होते हैं, तो स्वयं के विघ्नों को हम कैसे पार करते हैं। दूसरा होता है हमारे परिवार में भी कुछ विघ्न होते हैं, तो उनको भी हम कैसे पार करें। फिर हमारे, हम सेवाओं में जब जुटते हैं तो सेवाओं में भी कई बार छोटे छोटे मोटे विघ्न आते हैं, तो उनको भी हम कैसे पार करें। और जैसे कि बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी भी सेंटर का जो वातावरण हो वो निर्विघ्न हो, और उस निर्विघ्न अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस वातावरण को बनाने के लिए हम सभी भाई बहने कैसे योगदान दे सकते हैं। अगर हम स्वयं निर्विघ्न रहेंगे, हम जिस परिवार में रहते वो निर्विघ्न रहेगा, तो अपने आप सेंटर्स भी निर्विघ्न होते जाएंगे और उस निर्विघ्नता से सेवा भी हमारी निर्विघ्न होगी। तो हमें उस निर्विघ्न स्थिति का अनुभव जरूर करना है। तो उस जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी भाई साहब जी ने भी कहा कि कितने भाई बहने जो है जो पहली बार स्पार्क विंग की मीटिंग में आए हैं, तो लगभग 60% हाथ उठे थे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहने अभी अभी ज्ञान में आए हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो हम सभी को यह बहुत बड़ा चांस है कि हम अपनी स्थिति को निर्विघ्न बना सकते। भले कोई 50 साल से भी ज्ञान में है, या हम 5 साल से ज्ञान में है, या 5 महीने से ज्ञान में है, लेकिन हम सबको यह अनुभव जरूर हो सकता है। और हमें उस अनुभव को कैसे प्राप्त करें, तो एक सादा सा एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत सुंदर सी बात हमेशा जगदीश भाई जी के क्लास में भाई जी हमेशा अनुभव के रूप में बताते थे कि जगदीश भाई जी का जब कोर्स हो रहा था, तो दूसरे ही दिन कुंज दादी ने उनको, जब दिल्ली में कोर्स चल रहा था उनका, तो कुंज दादी ने उनको कुछ सेवा दी थी और कुछ सामान था जो मधुबन भेजना था आबू के लिए। तो उनको कहा कि आपको स्टेशन जाना है और वो पर्टिकुलर जो सामान है वो रजिस्टर्ड करके उसको रेलवे से आपको भेजना है। तो भाई साहब रेलवे के जो सर्विस थी, जो लगेज सर्विस, वहां पे खड़े थे लाइन में और उनका नंबर आने की राह देख रहे थे। तो एक कोई और एक भाई वहां से आया, कोई बाहर का, तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बक्सा था, बहुत हेवी बक्सा था, और उसके हाथ से वो छूट गया। और जैसे वो छूटा तो भाई साहब के पैर पे जाकर वो गिरा और भाई साहब का जो अंगूठा था वो पूरा जैसे क्रश हो गया और उसमें से खून भी बहने लगा और उनको बहुत दर्द भी हो रहा था। तो जैसे कि पहले उनकी जो अंतर मन में जो कुछ भावना प्रकट हो रही थी, तो थोड़ा सा उनको एकदम उद्वेग आया, थोड़ा सा जैसे कि हम जानते हैं सभी, हमारे साथ भी अगर ऐसा होता तो नॉर्मली हमारा क्या रिएक्शन होता है, तो वैसे ही थोड़ा सा उनको मन में आया। लेकिन दूसरे क्षण में उनको ये याद आया कि पहले दिन उनको जब कोर्स में बताया गया कि आप आत्मा हो और आप शांत स्वरूप आत्मा हो, तब जब ये बात उनको उसी क्षण याद आई और उसी क्षण में उन्होंने अपने शांत स्वरूप को अपने जीवन में धारण कर लिया। तो उस क्षण में जैसे ही वो शांत स्वरूप बन गए, तो जो भी आगे का जो विघ्न होता है, जैसे कहे हम, या जो भी बात हो सकती थी, वो टल गई और उन्होंने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक, शांतता पूर्वक, सहन शक्ति पूर्वक उस बात को सह लिया और अपना टर्न आया, उन्होंने वो पार्सल भी दे दिया और उस भाई को भी कुछ नहीं कहा। तो ये है कि हमारे में जो सारे गुण है, जो 7 गुणों की हम बात करते हैं, तो हमारे पास ये बहुत बड़ी उपलब्धि है या प्रॉपर्टी हमारी, उसी को अगर हम बार बार उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, तो उस स्वरूप का ही हमारा स्थिति बनती है और उस स्थिति से ही हम निर्विघ्न जरूर बन सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही इफेक्टिव ऐसा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव किया और उससे वो निर्विघ्न रहे खुद भी और सेवा भी निर्विघ्न रही। तो वैसे ही हमें छोटे छोटे ऐसे प्रयोग अपने जीवन में जरूर एक्सपीरियंस करने हैं और उसी से हमारी दृढ़ता, हमारी जो सेवा में लगन है वो बढ़ेगी और सेवा भी निर्विघ्न होती जाएगी। तो इसी को हम डिटेल रूप में फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो ऑब्स्टेकल फ्री लाइफ को हम कैसे एक्सपीरियंस करें और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो कैसे हम बरकरार रखें। ओम शांति।